ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
क्लास कैन बी इन हिंदी। वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवत कैंटो 10 चैप्टर 3 वर्स नंबर 7-8। We'll only sing the first verse actually. I told to write only the first verse, it will take too long. हम ये दशम स्कंद के तीसरे अध्याय का सातवां श्लोक पढ़ रहे हैं। मुमुचु मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जून अनुसागरम। मुमुचूर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधारा मंदम मंदम जलधरा जगर्जूर अनुसागरम। मुमुचूर मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधारा जगर्जूर अनुसागरम। मुमुचूर मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जूर अनुसागरम। स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा देवताओं ने और महर्षियों ने आनंद के भावनाओं से फूलों की बरसात की और आकाश में एकत्रित बादल मंद मंद रूप से गरजने लगे सागर की लहरों की तरह आवाज करते हुए। और फिर भगवान विष्णु जो कि सबके हृदय में स्थित हैं वो देवकी के गर्भ से अंधेरी रात्रि में प्रकट हुए, ठीक उसी तरीके से जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण के ही श्रेणी में थी। देवकी वॉज ऑफ द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रसा प्रतिवाभिताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं इस तात्पर्य में कि ये श्लोक का अर्थ है कि कृष्ण और उनके सारे पार्षद एक ही श्रेणी के हैं, सब आनंद चिन्मय रस हैं। कृष्ण, कृष्ण के पिता, कृष्ण की माता, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के सखा, कृष्ण के गाय, सब कृष्ण के एक्सपेंशन हैं, जैसे कि ब्रह्मा विमोहन लीला में पता चला। जब ब्रह्मा जी कृष्ण के पार्षदों को ले गए कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए, भगवान अपने आप को विस्तारित करने लगे अनेक अनेक बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में, जिसको ब्रह्मा जी ने देखा वे सभी विष्णु मूर्ति थे। देवकी भी कृष्ण के एक विस्तारित स्वरूप है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है देवक्यायम देवरूपेणम विष्णु सर्वगूयशः। भगवान के प्रकट होने के समय ऋषि और देवता बड़े प्रसन्न हुए और फूलों की बरसात करने लगे। समुद्र के किनारे लहरों की मंद मंद आवाज थी और समुद्र के ऊपर बादल थे जो कि बहुत ही आनंद देने के तरीके से गरजने लगे। जब सब स्थितों को इस तरह से एडजस्ट किया गया, सबको इस तरह से व्यवस्थित किया गया, तब भगवान विष्णु जो सबके हृदय में निवास करते हैं, वो रात्रि के अंधकार में भगवान के रूप में प्रकट हुए देवकी के सामने, जो कि एक महान देवी के रूप में प्रकट हुए हैं। उस समय भगवान विष्णु का प्रकट होना उसकी तुलना जो है पूर्व दिशा में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान की जा सकती है। एक प्रश्न उठता है, कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए तो उस दिन तो पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं हो सकता। इसके उत्तर में बताया गया कि भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए, तो हालांकि उस रात्रि को चंद्रमा पूर्ण नहीं था, फिर भी भगवान के उस वंश में प्रकट होने से जिस वंश में जो चंद्रमा का स्वयं का वंश है, उस वंश में प्रकट होने से चंद्रमा को इतनी आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि भगवान कृष्ण की कृपा से वो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान हुआ। आज भी होगा रात को, आप देखना अगर आपकी आध्यात्मिक आंखें हैं तो नहीं तो सुनने से हम विश्वास कर सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं टू वेलकम द सुप्रीम लॉर्ड द वेनिंग मून बिकेम अ फुल मून इन जुबिलिएशन। भगवान कृष्ण का स्वागत करने के लिए, हालांकि वेनिंग मून है, अभी ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या चंद्रमा का प्रकाश कम होता जाता है, लेकिन कृष्ण मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं सुन के चंद्रमा पूर्णिमा के समान चमकने लगा। ये जो देव रूपनियम शब्द है, भागवत के कुछ लोग कुछ जो अलग वर्षन्स हैं उसमें बताया गया विष्णु रूपनियम, कहीं पर देव रूपनियम और कहीं पर विष्णु रूपनियम। दोनों स्थिति में इसका अर्थ यह है कि देवकी का रूप भगवान जैसा ही है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति दोष नहीं दे सकता कि कैसे भगवान प्रकट हुए सच्चिदानंद विग्रह देवकी के गर्भ से। जिन व्यक्तियों को ये पता नहीं होता कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जिनको ये पता नहीं होता वो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान एक साधारण बालक के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं। वास्तव में भगवान का जन्म साधारण नहीं है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में पहले से ही हैं, क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में पूर्ण शक्ति से प्रकट पहले से ही थे, वो अपनी इच्छा से उनके शरीर से बाहर आ गए। 12 महाजनों में से एक हैं भीष्मदेव, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासकीर वयम। तो उसमें से एक हैं भीष्मदेव, वो महान भक्त हैं। वो बोलते हैं कि हालांकि भगवान सबके हृदय में हैं, भगवान सबके हृदय में ऐसे ही हैं जैसे सूर्य सबके सिर के ऊपर एक साथ मौजूद हो सकता है। हालांकि सूर्य लाखों करोड़ों लोग कह सकते हैं कि सूर्य मेरे ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अलग अलग जगह पर फैल गया है। ऐसे भगवान की अचिंत्य शक्ति हैं, ही कैन बी विद इन एवरी वंस हार्ट एंड येट नॉट बी सिचुएटेड वेरियसली। भगवान सबके हृदय में भी हैं फिर भी वो अलग अलग वितरित नहीं हुए हैं। इसको ईशोपनिषद में बताया गया एकवत्वम अनु पश्यतः, द लॉर्ड इज वन बट ही कैन अपियर इन एवरी वंस हार्ट बाय इनकंसेबल पोटेंसी। अपनी अचिंत्य शक्ति से वही एक भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं। तो हालांकि भगवान देवकी के हृदय में थे, वो उनके बच्चे के रूप में प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी वैष्णव तोषिणी में कोट करते हैं विष्णु पुराण में, वो कहते हैं कि भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए अनुग्रहस्य। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान कण कण में हैं, हर अणु में भी हैं। कौन सा श्लोक है? अंडांतरस्त परमाणु चयनतरस्त। ही सिचुएटेड इन मथुरा इन वैकुंठ एंड इन द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ द डिवोटी। भगवान मथुरा में भी हैं, वैकुंठ में भी हैं, सबके हृदय में भी हैं। इसलिए हमको साफ समझना चाहिए कि वो देवकी के गर्भ में या हृदय में साधारण बालक के रूप में नहीं रहे, और वह साधारण मानव की तरह नहीं प्रकट हुए, हालांकि वैसे प्रकट हुए दिखने में असुरों को और कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए। असुर गलत सोचते हैं, वे सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ, असाधारण व्यक्ति की तरह उनके शिकारी के तीर से मृत्यु हो गई। ये सब असुर के विचार हैं। जिनको भगवान का ज्ञान होता है वो इन सब विचारों को ठुकरा देते हैं। अजोपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन। भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान अजय हैं, अनबॉर्न, वो जन्म नहीं लेते और वो सबके ईश्वर हैं, फिर भी वो देवकी नंदन के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया गया, वो भगवान जो कि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने के विशेष महत्व को जानते हुए व्यक्ति को कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वह साधारण बालक के रूप में जन्म लेते हैं। ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाव्यये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पदांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदांबोज राधा मदन मोहन दिव्याद वृंदारण्यकल्पद्रुमादौ श्रीमाद रत्नाकर सिंहासनस्थौ शिशिराधा शील गोविंद देवो प्रिश्चलाभी सेव्यमानु स्मरामि। श्रीमान रासर सारंभी वंशी वट तटस्थित कृष्णस्वनेर गोपी गोपीनाथा श्रीयस्तु नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मैं श्री गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारे परंपरा के सब आचार्यों की वंदना करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और आप सब वैष्णवों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, स्पेशली सीनियर वैष्णवों का और स्पेशली हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी का। मैं अयोग्य हूँ भगवान कृष्ण के बारे में बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलने से और सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है, मैं आप सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए श्रील प्रभुपाद के बोले हुए शब्द को दोहराने का प्रयास करूंगा। आज बहुत परम दिवस है वैष्णव के लिए, परम पवित्र दिवस है जन्माष्टमी, वह दिन जब 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि सब कारणों के कारण हैं, जो सारे विष्णु अवतारों के स्रोत हैं, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा और शिव कार्य करते हैं, वही भगवान कृष्ण आज के दिन इस भूतल पर प्रकट हुए। कृष्ण शाश्वत हैं और उनकी लीला भी शाश्वत है। अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और उनके आने का मुख्य उद्देश्य है अपने भक्तों को आकर्षित करना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान सर्वेश्वर ईश्वर हैं। धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना, असुरों का वध वो अपने शक्तियों के द्वारा भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन कृष्ण के आने का वास्तविक उद्देश्य है हम सबको अपने धाम में वापस बुलाना। कृष्ण सबके पिता हैं और सब जीव कृष्ण के दास या पुत्र के समान हैं। कृष्ण को भूल जाने के कारण जीव अनेक अनेक योनियों में भटक रहे हैं और बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। इस दुनिया में इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, कीड़े तक, सब दुखी हैं। अपने प्राणनाथ कृष्ण को भूल जाने के कारण सब जीव संसार की दावाग्नि में जल रहे हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक के तीन प्रकार के ताप जीवों के हृदय को पीड़ित कर रहे हैं और ये सब दुखों का कारण एक है कि हम सब अपने हृदय के स्वामी गोविंद को भूल गए हैं। कृष्ण को भूल जाने के कारण जीव बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है और कृष्ण इतने दयालु हैं कि हालांकि जीव उनकी सत्ता का विरोध करते हैं, अपनी रिबेलियस मेंटालिटी से विरोध करते हुए इस भौतिक जगत में आते हैं, फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि वह जीव को वापस ले आने का प्रयास करते हैं। कृष्ण करुणा सिंधु हैं, हम कृष्ण की कृपा को समझ नहीं सकते। इस भौतिक दुनिया में भी अगर कोई बालक अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है, चाहे वो कितना भी गलत क्रिया किया हो, माता पिता वापस उसको लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस दुनिया के पिता या माता की कृपा बहुत सीमित होती है, और अगर वो चाहें तो भी उनकी योग्यता नहीं होती उसको वापस ले आने की। लेकिन कृष्ण करुणा के सागर हैं, और श्रीमती राधा रानी माता वो हमारे से भी ज़्यादा, कृष्ण से भी ज़्यादा करुणाशील है। तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, नंद यशोदा वसुदेव देवकी के साथ में प्रकट होते हैं सिर्फ एक ही उद्देश्य से, ऐसी सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं जिसके द्वारा बद्ध जीव वापस उनके धाम लौट सके। टेर कदम के पास वो सुंदर स्थान है नंदगांव में, जहाँ पर भगवान गोपीनाथ अपनी मुरली बजाते हैं शाम के समय गायों को वापस बुलाने के लिए। ऐसी हम सब कृष्ण के खोए हुए गायें हैं, और कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने नाम के द्वारा हम सबको वापस बुला रहे हैं। कम बैक होम, बैक टू गॉड है कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जस्ट सरेंडर टू मी। कृष्ण सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उनके प्रति समर्पित हों। इसके गोपी परायण धन प्रभु रिसेंटली बता रहे थे कि सरेंडर इंग्लिश में शब्द है, लेकिन सही शब्द जो संस्कृत में है शरणम, वो सरेंडर से ज़्यादा गहरा है। शरण का मतलब सरेंडर नहीं है, सरेंडर तो डर से भी होता है, मिलिट्री में भी सरेंडर होता है, नहीं हैंड्स अप है ना सरेंडर। लेकिन कृष्ण जो शरण दे रहे हैं वो प्रेममय शरण है, जैसे एक बच्चे को अपनी माता के गोद में प्रेम का अनुभव होता है, ऐसे जीव को कृष्ण के चरणों में आनंद का अनुभव होता है। जैसे कोई यात्री अपने घर से भटकते भटकते अनेक स्थानों से जब वापस घर में लौटता है तो उसको आनंद अनुभव होता है। जैसे कोई छोटे पक्षी अपने घोंसले में जब उनके माता बाहर जाते हुए वापस लौट कर आते हैं तो उसको आनंद होता है, वैसे जब हम वापस गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं तब हमें सच्चे आनंद का अनुभव होता है और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण हम में से हरेक के लिए वापस लौटने के लिए तरस रहे हैं, चाहे हम कितने भी नालायक हों, कितने भी पापी हों, कितने भी अपराधी हों, हमारा एक ही गुण है और वो है कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के दास हैं, वी आर रिलेटेड टू कृष्ण इटर्नली। यही एक परम सत्य है जिसको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दासों का दास हूँ, मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी एक पर्पट में लिखते हैं, इफ समबडी डज रियलाइज जस्ट रिमेंबर्स वन थिंग दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, हमेशा याद रखना मैं कृष्ण का दास हूँ, तो वह शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हम सब कृष्ण के अंश हैं, और जब हम वापस कृष्ण के धाम लौटेंगे तब हम सुखी होंगे और तब कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए कृष्ण वास्तव में आते हैं हमको अपना संदेश सुनाने के लिए। कृष्ण का संदेश सारे जीवात्माओं के लिए, सब जीव कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण भगवद गीता के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हम कैसे उनके पास लौट सकते हैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कृष्ण बोलते हैं मेरे में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो, ऐसा करने से निश्चित तो मेरे पास आओगे। भक्ति में सफलता के लिए हमें अपने मन को हमेशा कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। कृष्ण के चरण कमल इतने सुंदर नौका के समान है, जो व्यक्ति भगवान नंदनंदन के चरणों का आश्रय लेता है उसके लिए संसार रूपी विशाल सागर छोटा सा गाय के बछड़े के पैरों में जितना निशान पानी होता है उतना बन जाता है। यह है भगवान के चरणों का ध्यान करने का फल। संत, महर्षि, साधु, महात्मा हमें सिखाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, नंद नंदन कृष्ण का आश्रय लो, वो सब भय से मुक्त कर सकते हैं। पदम पदम यद विपदम नतेशम समाशित पद प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदम नतेशम। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना में बताया गया कि यह दुनिया जो एक भयावह स्थान है, हर स्टेप पर खतरा है, हर स्टेप पर डेंजर है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, उनके लिए भवाम्बुधि वत्स पदम की तरह बन जाता है। भव का सागर जो है वैसा बन जाता है जैसे गाय के बछड़े के पैरों में जितना पानी होता है। मैं ये दशम स्कंद पर चर्चा करने से पहले मैं श्रील प्रभुपाद का एक संदेश आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं 100% एज इट इज ये प्रभुपाद जी के तीन वाक्य बोलना चाहता हूँ जो बहुत अर्जेंट हैं, जो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। अगर आप ये वाक्यों को याद रखोगे तो आप निश्चित ये शरीर छोड़ने के बाद गोलोक वृंदावन जाओगे। कितने लोग जाना चाहते हैं? हरि बोल बोलिए। मैं श्रील प्रभुपाद जी के दासों के दास, श्रील प्रभुपाद जी के दासों के दास राधेश्याम प्रभु हैं, उनका दास मैं रिपीट कर रहा हूँ, एज अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, प्लीज लिसन विद रैप्ड अटेंशन। बाद में इसके बाद आप सो जाना, कोई बात नहीं, बट दिस थ्री सेंटेंसेस प्लीज लिसन, आई विल फर्स्ट रीड इन इंग्लिश। वन मस्ट बी वेरी फॉर्चुनेट टू हियर कृष्ण कथा एज सीरियसली एज महाराज परीक्षित डिड। व्यक्ति को कृष्ण कथा ऐसे सुननी चाहिए जैसे महाराज परीक्षित ने दी। ही वॉज एस्पेशली इंटेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग डेथ एट एनी मोमेंट। वह स्पेशली ध्यान से कथा सुन रहे थे क्योंकि उनकी मृत्यु आने वाली थी। नाउ दिस बिगिन्स द थ्री सेंटेंसेस, फोर सेंटेंसेस, रेडी? हरि बोल। एवरी वन ऑफ अस शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। हर व्यक्ति को हर क्षण, इसका मतलब जन्माष्टमी के दिन भी, प्रसाद के समय भी, सोने के समय भी, बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट, हर क्षण मृत्यु का ध्यान करना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, दिस लाइफ इज नॉट एट ऑल अश्योर्ड, ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। एट एनी टाइम वन कैन डाई, हर क्षण किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। फिर आप बोलोगे मैं तो आई वाइफ स्टूडेंट हूँ, इसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट डज नॉट मैटर वेदर वन इज अ यंग मैन और एन ओल्ड मैन, आई वाइफ या आई ओ एफ, इट डजेंट मैटर, मैन और वुमेन, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर वेदर वन इज यंग मैन और ओल्ड मैन, जवान हो या बूढ़ा हो। लास्ट सेंटेंस कल्मिनेशन है, प्लीज लिसन, बिफोर डेथ टेक्स प्लेस वी मस्ट बी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। मृत्यु आने से पहले हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बनना, इसका मतलब शुद्ध भक्त बनना। तो ये बातें हमने कई बार सुने हैं, मैंने स्वयं कम से कम 10 बार डिवोटीज को बताया। एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे कि प्रभु जी बाकी डिवोटीज जो एंड में बोलते हैं आप शुरुआत में ही बोल देते हैं, बाकी डिवोटीज अलग अलग चीज़ बोलते हैं और बाद में बताते हैं मृत्यु का डर, आप पहले ही बताते हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि प्रवचन के एंड तक मैं जीवित नहीं रहूँ, आई मे नॉट लिव टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इट्स अ फैक्ट, प्रभुपाद डजंट स्पीक लाइज, प्रभुपाद जी झूठ नहीं बोल रहे और डॉक्टर्स भी बताते हैं, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि पेशेंट जीवित रहेगा, पेशेंट की बात छोड़ो अपने स्वयं की गारंटी नहीं है। So these things should be taken very serious. The whole purpose, हमें क्यों इतना बड़ा लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इतने ये सुंदर पंडाल प्रोग्राम के लिए, अभिषेक के लिए, करोड़ों रुपए मंदिर बनाने के लिए, उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं और आप परीक्षित महाराज की तरह बने। That is the purpose of the whole ISKCON society, to become a follower of Parikshit Maharaj. Hum Parikshit Maharaj ki tarah sune, perfect hearing with rapt attention, dhyan purvak shravan karna. Prabhupada ji bolte hain, that is tantamount to seeing God face to face. Submissive oral reception is as good as seeing Krishna face to face. जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये मैं आपको देख रहा हूँ, अगर कोई ध्यान से श्रवण कर रहा है, इसका मतलब वो कृष्ण को देख रहा है। हमारी परंपरा है कृष्ण कथा के श्रवण की है। चैतन्य महाप्रभु कैसे श्रवण करते थे गदाधर पंडित से, वही संदेश बार बार। लास्ट ईयर मैं हर वर्ष यहाँ पर आता हूँ जन्माष्टमी के लिए, लेकिन लास्ट ईयर मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरे को एक मेजर हार्ट ऑपरेशन हुआ जिस जन्माष्टमी के 2 दिन पहले। ऑपरेशन के दिन अगले दिन मेरे को होश आ गया। जन्माष्टमी के दिन मैं मोबाइल फ़ोन पे लेक्चर सुन रहा था भगवान की दया से, तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आप पुणे आने वाले जन्माष्टमी के लिए। मैंने बोला पता नहीं, नहीं आ सकता, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम। और इस वर्ष मेरे एक प्रिय गुरु भाई रघुपति प्रभु मेरे से काफ़ी यंग हैं उम्र में, उनको भी मैसिव हार्ट अटैक हुआ। अब भगवान की दया से, वैष्णव की प्रेयर से अभी वो अच्छे हेल्थ में, लेकिन कृष्ण इंडिकेट कर रहे हैं मेरी उम्र 45 है, उनकी 35 है, कई की 25 है। कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि फैक्ट है कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो सत्य है इसको पहले याद करना चाहिए कृष्ण कथा सुनने से पहले। Then you will feel the urgency to take shelter of Krishna Katha and Krishna Naam. आपको लगेगा कि यस ये अर्जेंट चीज़ है, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, दिस इज द रियल नीड फॉर ऑल डिवोटीज टू हियर अबाउट कृष्ण विद रैप्ड अटेंशन। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो, मृत्यु और हरि का नाम। ये दो चीज़ों को हमेशा याद रखो, चाहे आप भूल जाओ कि आपका पासवर्ड क्या है कंप्यूटर का, आप अपने ATM कार्ड का नंबर भूल जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे आप कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन ये मत भूलो डेथ और हरि। जन्माष्टमी का रियल अर्थ है हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होना। और हृदय में कृष्ण कैसे प्रकट होना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं, कल भी मैंने चर्चा की थी, वसुदेव जी का विवाह हो रहा होता है देवकी के साथ, और उस समय कंस वसुदेव और देवकी को रथ से ले जा रहा होता है, उनको एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, अरे मूर्ख कंस, जिसको तुम रथ पर ले जा रहे हो उसी का 8वां बालक तुम्हारा काल सिद्ध होगा, वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस जो कि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, जब उसको पता चला कि मेरा जीवन खतरे में है, तो उसका सारा प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। अपने हाथों से देवकी के बालों को पकड़कर, दाएं हाथ से तलवार निकालकर वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। बाद में वसुदेव जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि जीवन अशाश्वत है, मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बहुत कुछ फिलॉसफी बताया उन्होंने जो भगवद गीता में बताई गई है, लेकिन कंस सुनने को तैयार नहीं था। और अंत में वसुदेव जी ने निश्चय किया, इसको दूसरे तरीके से मैं कम से कम खतरे को टाल लूँ। अगर कोई व्यक्ति खतरे को रोक नहीं सकता तो पोस्टपोन कर सकता। तो उन्होंने समझाया उसको कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूँगा। और कंस जानता था कि वसुदेव अपने वचन के बद्ध हैं, वचन का आदर करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल को स्वीकार किया। पहले पुत्र होते ही वसुदेव जी ले गए कंस के पास और सोचने लगा कि मुझे तो डर ये पहले पुत्र से नहीं है, आठवें पुत्र से है। हमने कहा आप इसको वापस ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद कृष्ण के प्रिय पार्षद श्रील नारद मुनि वो प्रकट हुए और कंस को बताने लगे कि मैं अभी अभी आ रहा था स्वर्गलोक से और वहाँ सब देवता मिलकर मीटिंग कर रहे थे और मुख्य विषय था आपको कैसे मारा जाए। और उन्हें बताया कि स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं और सारे देवता यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए तुम सावधान हो जाओ। और नारद मुनि ने अपने इशारे से ये भी बताया कि कोई भी बालक जो है वो आठवां गर्भ हो सकता है। कंस ने एक एक करके छह पुत्रों की हत्या की और साथ में गर्भ के रूप में स्वयं बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जयंती के दिन 28 तारीख को आपने कथा डिटेल में सुनी होगी कि कैसे अनंत शेष बलदेव जब प्रकट हुए देवकी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश आने लगा। और उस समय भगवान कृष्ण ने योग माया को आज्ञा दी कि तुम देवकी के गर्भ में स्थित इस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, उस समय क्षत्रियों को अलाउड था और पॉसिबल भी था, आजकल तो मुश्किल है। तो वसुदेव जी की कई पत्नियां कंस के डर के मारे अलग अलग जगहों पर स्थित थी, उसमें से एक रोहिणी थी जो कि नंद महाराज के यहाँ पर रहते थे गोकुल में। क्योंकि नंद महाराज वसुदेव बहुत घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए वसुदेव जी ने अपनी एक पत्नी रोहिणी को नंद महाराज के पास में रखने के लिए निवेदन किया था। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और बताया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे विश्व में तुम्हारी अनेक रूप से पूजा होगी। तो योग माया की प्रेरणा से बलराम जी रोहिणी के गर्भ से बलराम जयंती के दिन प्रकट हुए और फिर भगवान कृष्ण के प्रकट होने का समय आया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा शिल प्रभुपाद जी के पर्पट से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो षड गर्भ हैं वास्तव में कौन थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत ने भी किया गया है, बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हैं, जैसे कि नारद एक हैं, दक्ष एक हैं और एक मरीचि है। मरीचि के छह पुत्र थे, यानी ब्रह्मा जी के ग्रैंडसन। और आप सब एक कथा जानते हैं कि भगवान के दिव्य प्लान से ब्रह्मा जी अपने स्वयं की पुत्री की तरफ आकर्षित हुए। हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी या शिव जी भगवान की माया से जब प्रभावित होते हैं वो भी भगवान कृष्ण का ही इंतज़ाम होता है, ये दिखाने के लिए कि मेरी माया शक्ति कितनी शक्तिशाली। भगवान कहते हैं गीता में, देवी ऐशा गुणमयी मो माया दुरत्यय मामे वय प्रपद्य। जब ब्रह्मा और शिव जी भी प्रभावित हो सकते हैं तो मैं और आप बद्ध जीव तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हुए, हाँ हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करना आसान नहीं है लेकिन बहुत सरल भी है, बहुत आसान भी है। अपने आप के प्रयास से कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना यानी माया को पराजित करना, माया रूपी जेल से बाहर निकलना। लेकिन मामे वय प्रपद्यन, वन हू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। What does it mean to take shelter of Krishna? कृष्ण का आश्रय लेने का इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जानना कि सिवाय कृष्ण के मेरा कोई रक्षक नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में बताते हैं इस तरह से, सब कुछ आप हो, सब कुछ आपके लिए, आप ही मेरे पालन करता हो, आप ही मेरी रक्षा करते हो। शरणागति का मतलब है रक्षति कृष्ण इति विश्वास। और सबसे बड़ी रक्षा ये शरीर की रक्षा नहीं है। आज के दिन हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा के लिए। हमारी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए। तो ब्रह्मा जी के ये जो घटना को देख के हम समझ सकते हैं कि हमें कृष्ण का आश्रय लेना है, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, आप ही पालन करता, आप ही रक्षक हो। आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी होई नो परम सुखी, दुख दूरे गेला चिंता न रहीला, चौधरी के आनंद दे। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाउ आई सरेंडर टू यू माय लॉर्ड, माय ऑल माय मिजरीज आर वैनिश्ड, सब मेरे दुख दूर हो गए, सब चिंता दूर हो गए, बस मैं आपकी शरण में आ गया, मेरे को आपके सिवाय कुछ नहीं पता है। शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी तीन लाइन में शरणागति को डिफाइन करते हैं। प्रभु बोलते हैं शरणागति मतलब हा हा प्रभु नंद सुत वृष भानु सुत युत करुणा करो एक बार, नरोत्तम दास कोय नाथे लियो रंग पय तुम बिना के आछे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे राधा रानी वृष भानु दुलारी कृष्ण प्रिया श्यामा, और हे कृष्ण हे श्याम सुंदर हे कुंज बिहारी गोपीनाथ राधा रमन, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, हमारा कोई है नहीं आश्रय। ये हमारी चेतना होनी चाहिए जिसे कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो। आई हैव नो अदर शेल्टर एक्सेप्ट कृष्ण। बाइबल में कहा गया लव गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड ऑल योर सोल, भगवान को पूर्ण हृदय से प्रेम करो। तो ब्रह्मा जी जब आकर्षित होते हैं तो उनको देखकर मरीचि के पुत्र हंसने लगते हैं, सोचते हैं ओ देखो दादाजी क्या कर रहे हैं। अरे नेचुरल है हंसना, लेकिन बहुत डेंजरस भी है। हर नेचुरल चीज़ अच्छी नहीं होती, हर स्वाभाविक चीज़ अच्छी नहीं होती। और मरीचि के पुत्र के हंसने के कारण उनको शाप मिलता है कि तुम असुर परिवार में जन्म लो। तो ये छह पुत्र अगले जन्म में कालनेमी के पुत्र बनते हैं। कालनेमी कंस का पूर्व जन्म था, कालनेमी नेक्स्ट जन्म में फिर कंस बनते हैं। तो कालनेमी के छह पुत्र होते हैं, उनके नाम होते हैं हंस सुविक्रम क्रार्थ दमन रिपुर मर्दन और क्रोध हंता। तो ये छह पुत्र होते हैं कि षड गर्भ बोला जाता है। ये बहुत शक्तिशाली थे और मिलिट्री अफेयर्स में बहुत एक्सपर्ट थे। इनके पिताजी थे कालनेमी और इनके दादाजी थे श्रीमान हिरण्यकशिपु, देवर ग्रैंड सन्स ऑफ हिरण्यकशिपु। क्योंकि इनको याद था हमने ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया था, तो तपस्या करने गए ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने। ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। ये छह भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, डियर लॉर्ड ब्रह्मा इफ यू वांट टू गिव अस अ बेनेडिक्शन गिव अस द ब्लेसिंग दैट विल नेवर बी किल्ड बाय एनी डेमी गॉड, हम किसी भी देवता के द्वारा मारे नहीं जाएं, ये आशीर्वाद दो, किसी महारोग से नहीं, किसी यक्ष से नहीं, गंधर्व से नहीं, सिद्ध चारण से नहीं, मानव से नहीं, मुनियों से नहीं। ब्रह्मा जी उनके उद्देश्य को समझ गए। लेकिन हुआ ये कि हिरण्यकशिपु को पता चला, हिरण्यकशिपु के दादाजी थे और हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, आप जानते हैं पहले तपस्या में। तो हिरण्यकशिपु वो बहुत क्रोधित हुए और वो बोलने लगे अपने दादाओं अपने पोतों को ग्रैंडसन को कि आप मेरे संग को छोड़कर मेरे अनुमति के बिना ब्रह्मा जी की पूजा करने गए हो, लेकिन मैं तुमको शाप देता हूँ, तुमने बहुत सारे वरदान मांगे हैं कि यक्ष गंधर्व से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो, लेकिन तुमने ये नहीं मांगा कि राक्षस से मृत्यु नहीं हो, क्योंकि वो राक्षस परिवार में था। उन्होंने बोला आपके पिता राक्षस हैं कालनेमी, और मैं ये शाप देता हूँ कि तुम्हारे पिता कालनेमी अगले जन्म में कंस बनेंगे और तुम देवकी के पुत्र के रूप में आओगे और कंस तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस शाप के कारण इन छह षड गर्भों को देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और अपने स्वयं के पिता उनके स्वयं के पिता कंस हैं, सॉरी यस कंस पूरे जन्म में पिता थे, अभी वो मामा हैं, अपने स्वयं के पिता के द्वारा वो मारे गए। तो श्रील प्रभुपाद ये कोट कर रहे हैं हरिवंश से। हरिवंश जो है एक सप्लीमेंट है महाभारत के लिए, जिसमें कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका ये कथा का एक सिंबॉलिक मीनिंग भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो छह गर्भ हैं, षड गर्भ, ये हमारे हृदय के अनर्थ हैं, ये हमारे हृदय के अनर्थ हैं। और कृष्ण के प्रकट होने से पहले इन छह अनर्थों का अंत होना जरूरी है। इन छह षड गर्भों को कंस ने मारा। तो कंस क्या है इस एनालॉजी में, इस उदाहरण में? कंस है फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, इस भौतिक जगत का डर या माया का डर। एक भक्त को यह डर होना चाहिए कि कहीं मैं ऐसी जगह पर जन्म नहीं लूं जहां मुझे भक्तों का संग नहीं हो। एक भक्त को डर होना चाहिए कि पता नहीं मेरा अगला जन्म कहां पर होगा। तो ये जो डर है, इस डर के कारण अनर्थ अंत होते हैं और फिर कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर बलराम जी, और उसके बाद फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। बलराम जी आते हैं देवकी के गर्भ को तैयार करने के लिए, कृष्ण के प्रकट होने के लिए। और ऐसे ही गुरु जो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमारे हृदय को तैयार करते हैं कृष्ण को प्रकट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण प्रकट हों, तो जरूरी है कि छह अनर्थ अंत हों। और छह अनर्थों को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड हैव अ हेल्थी फियर ऑफ माया, एक डर होना चाहिए माया का, भौतिक अस्तित्व का। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम सब डरपोक हो जाएं बिल्कुल भौतिक दृष्टि से। भक्त निर्भय होता है, लेकिन उसका डर ये होता है कि कहीं मैं कृष्ण को भूल नहीं जाऊं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, वो हर क्षण कृष्ण को याद करना चाहते। इस भय के कारण उसके मुख से हमेशा हरि नाम प्रकट होता है। वो जानता है अगर मैं एक क्षण भी हरि के नाम को भूल गया और उस क्षण मृत्यु हो गई तो मुझे फिर संसार में जन्म लेना होगा। आपको कहानी मालूम है महाप्रभु की लीला में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, हमेशा उनकी जीवा से हरे कृष्ण निकल रहा था, लेकिन जब वो शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो उस समय अपनी जीभ को पकड़ लेते हैं। और एक छोटा लड़का, एक छोटा बालक जिसका नाम होता है गोपाल, गोपाल को देखकर भगवान से पूछता है कि आप जीभ को क्यों पकड़ रहे हो? चंद्र आपकी जीभ से हरे कृष्ण निकल पकड़ रहे थे, हम कोशिश करते हैं और हम नहीं हो पाता, लेकिन महाप्रभु बिना स्पॉन्टेनियस है, तो स्वयं भगवान। भगवान ने बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे मैं ये गंदे जगह पे जा रहा हूँ। छोटा बालक गोपाल कहने लगा, अगर उस क्षण मृत्यु हो जाए तो व्हाट इफ डेथ कम्स एट दैट मोमेंट? महाप्रभु ने कहा ठीक है, मैं अभी जीव को नहीं पकड़ूंगा। लोग गाने लगे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कहानी सत्य भी है, इसका मीनिंग भी है, इसका एक अर्थ भी है कि हम सबको हर क्षण कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। और आप बोलोगे स्मरण कैसे होगा? अगर आपकी इच्छा है तो भगवान आपको स्मरण दिलाएंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि स्मरण और अपोहनम, अपोहनम यानी भूल जाना, स्मृति यानी याद करना, वो मेरे से आता है। साइंटिस्ट कई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कैसे मेमोरी कार्य करती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने की शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। सत्य यह है कि कृष्ण ही जीव को स्मरण कराते हैं। अगर आप आज के दिन राधा कुंज बिहारी से प्रार्थना करते हो कि भगवान आज आपका बर्थडे है, आज अपीयरेंस डे है कृष्ण का। जनरली इस दुनिया में कलयुग में लोग बर्थडे के दिन गिफ्ट देने जाते हैं, जिसका बर्थडे है उसको गिफ्ट देते हैं, लेकिन वैदिक कल्चर में जब किसी का जन्म होता है, जिसका जन्म हुआ है वो गिफ्ट्स देता है दूसरों को। जैसे आप देखोगे जब नंद महाराज के जब नामकरण संस्कार होता है, कृष्ण का बर्थडे होता है, तो नंद महाराज अपने पुत्र की ओर से गिफ्ट्स देते हैं। तो हमें आज कृष्ण से गिफ्ट मांगना चाहिए, और गिफ्ट ये मांगना चाहिए कृष्ण से कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों को याद करे, चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, मैं नरक में रहूं, मैं पशु योनि में रहूं या पक्षी योनि में रहूं, मैं गरीब रहूं या अमीर रहूं, मेरा शरीर एकदम स्वास्थ्य अच्छा हो या मुझे भयानक कैंसर हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण, अगर मैं आपके चरणों को याद करूं तो मेरा जीवन सफल है। आज के दिन अगर आप मांगोगे, आज कृष्ण अच्छे मूड में हैं, आज उनका बर्थडे है, और कल भी मांगना फिर से प्रभुपाद से, उनके प्योर डिवोटी से, जिस तरह भगवान से और गुरु से ये मांगो कि बस कृष्ण, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेम्बर यू कॉन्स्टेंटली, हर क्षण मैं आपके चरणों को याद करूं, हर स्थिति में आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं। ये कॉन्शियसनेस परफेक्ट कॉन्शियसनेस। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग नरक स्वर्ग पर्वग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। ऐसे डिवोटी के लिए स्वर्ग और नरक सब बराबर हो जाते। आप कृष्ण से प्रार्थना करोगे कि मेरे को संपत्ति दो या बीमारी को दूर करो, तो उससे आप संतुष्ट नहीं होगे। आप किसी योनि में चले जाओ, आप किसी जगह चले जाओ, आप बिल गेट की तरह अमीर हो या आप सड़क पर फकीर हो, ये दुनिया दुखालय है। लेकिन जिसने भगवान राधा रमन के चरणों को याद किया है, वो हमेशा सुखी है और दूसरों को सुखी बना सकता है। श्रील प्रभुपाद से उनके व्यास पूजा पे एक दिन किसी ने प्रश्न पूछा था, श्रील प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो डिवोटी सोच रहे थे प्रभुपाद जी क्या जवाब देंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहे थे श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे पुस्तक वितरण के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रीचर सोच रहे थे प्रीचिंग के द्वारा, पुजारी सोच रहे थे पूजा के द्वारा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया। श्रील प्रभुपाद जी बोले आई विल बी प्लीज्ड इफ यू लव कृष्ण, अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। गुरु को और वैष्णव को सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य कृष्ण से प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण प्रेम वो अनमोल रत्न है, जो भी आपके पास है वो सब त्याग दो उस अनमोल रत्न को प्राप्त करने के लिए, और कोई लॉस नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कांच के टुकड़ों को फेंक दो और हीरा ले लो, या कोई बोले छोटे छोटे 50 पैसे के सिक्के फेंक दो और हजारों के नोट ले लो, तो इसमें क्या लॉस है, व्हाट इज द लॉस। और दूसरी ओर बाइबल में कहा गया है व्हाट इज द गेन इफ वन गेन्स द होल वर्ल्ड बट लूजेस हिज सेल्फ। अगर वो कृष्ण भक्ति को भूल जाता है, अपने आप का आत्मा को भूल जाता है, तो पूरी दुनिया को प्राप्त करके क्या फायदा। आज के दिन हम भगवान से ये वरदान मांगते हैं कि हम उनको स्मरण कर सकें, यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको आप बार बार याद करोगे। कृष्ण गीता में बोलते हैं मन मना बहुत बहुत भक्त, मन मना का मतलब है मेरे को याद करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा स्मरण करो जन्माष्टमी के दिन 12 बजे तक, नहीं मेरा स्मरण करो रविवार को संडे प्रोग्राम के समय, मेरा स्मरण करो 16 माला, नहीं कृष्ण बोलते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा चिंतन करो। तो आज के दिन हम कृष्ण से भीख मांग सकते हैं, कृष्ण आपकी आज्ञा है कि मैं आपका स्मरण करूं, मैं आपसे प्रेम करूं, लेकिन इस आज्ञा को पालन करने की शक्ति भी आप ही दो। स्मरण करना भूलना मेरे हाथ में नहीं है, पूरी दुनिया ही आपके हाथ में कठपुतली है। आप चाहें तो एक क्षण में ब्रह्मा और शिव भी घायल हो सकते हैं, माया के प्रभावित हो सकते हैं, और आप चाहें तो मृगरारी जैसे शिकारी भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं एक क्षण में। मृगरारी नारद मुनि से मिले और शुद्ध भक्त बन गए, ऐसे उन्होंने कोई 6 डे कोर्स किया हो या उन्होंने कोई जन्माष्टमी कार्यक्रम अटेंड किया हो, जस्ट एक बार। कृष्ण स्वराट हैं, और कृष्ण किस जीव को किस समय अपना प्रेम प्रदान करें वो उनके हाथ में है, लेकिन हम उनसे भीख मांग सकते हैं। और अगर हम सफल नहीं हुए तो अगले दिन हम फिर मांगेंगे, और सफल हो गए तो और मांगेंगे। कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं है कि एक बार मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया, थैंक यू कृष्ण, अब दूसरे कार्यों में लगता हूं मैं। प्रेम का स्वभाव है कि जो व्यक्ति को प्रेम मिलता है वो सोचता है मुझे और चाहिए, मेरे अंदर कोई प्रेम है ही नहीं। श्रीमती राधा रानी और गोपियां ऐसे बोलते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं है। अगर हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो कृष्ण जब व्रत छोड़कर चले गए तो अपने प्राणों को त्याग देते। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रोते थे कृष्ण को याद करते हुए, कहाँ आनंद सूत कहाँ है, मोर पंखधारी कृष्ण कहाँ पर हैं। वो दीवारों के साथ अपने सिर को रगड़ते थे, रोते थे, कृष्ण कृष्ण कहाँ पर हैं। तो ये प्रेम का स्वभाव है, जितना आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा उतने आप और लोलुप होगे, और वो लोलुपता से फिर और प्रेम मिलेगा, फिर और लोलुप होगे, और अंत कब होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान के धाम में, और वहाँ भी प्रेम बढ़ता जाता है, स्टैटिक नहीं है। मेटीरियल वर्ल्ड में प्रेम क्या होता है, आई लव यू फिर विवाह के बाद आई हेट यू। इस दुनिया का प्रेम होता है कि बहुत मुझे प्रेम है, लेकिन अधिकांश केस में, सब केस में नहीं, लेकिन अधिकांश केस में थोड़े समय बाद प्रेम खत्म हो जाता है। वो प्रेम नहीं है, वो काम है। लेकिन आज हम गोपीनाथ से, कुंज बिहारी से, श्याम सुंदर से हम भीख मांगने आए हैं कि कृष्ण मेरे कोई प्रेम दो, गिव मी जस्ट वन ड्रॉप, दैट वन ड्रॉप कैन इनंडेट द होल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बूंद भी जो है प्रेम का वो पूरे विश्व को भर सकते हैं। ये सच्चा प्रेम, और जिसके अंदर ये प्रेम होता है वो प्रेम सबको बांटना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद के पास प्रेम है, श्रील प्रभुपाद के पास प्रेम, कृष्ण प्रेम का सागर है, इसलिए वो इतने उत्सुक थे बांटने के लिए। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, वी शुड हैव फियर ऑफ माया। अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो आज के दिन और हमेशा के लिए, तो ये 6 गर्भों का अंत होना जरूरी है, और वो तब संभव है जब हम भौतिक अस्तित्व का डर प्रकट करते, फियर ऑफ माया, फियर ऑफ माया। श्री प्रभुपाद जी एक बार बोले, माय ओनली रिग्रेट इज माय डिसाइपल्स आर नॉट सफिशियंटली अफ्रेड ऑफ माया। मेरे शिष्य या शिष्य के शिष्य माया से उतना डरते नहीं है जितना डरना चाहिए। हर स्टेप पे भक्त को सोचना चाहिए कि माया बहुत पावरफुल है। भक्ति का जीवन एक संघर्ष का जीवन है, जैसे देवकी और वसुदेव को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। वसुदेव और देवकी चाहते तो जब उनको पता चला कि कंस पुत्रों को मार रहा है, एक पुत्र को मारा, तो उसके बाद वो बंद कर देते और पुत्र प्राप्त करना। लेकिन उन्होंने कष्ट क्यों सहन किया, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी इंद्रियां वश में नहीं थे, लेकिन क्योंकि वसुदेव और देवकी जानते थे कि कृष्ण प्रकट होने वाले हैं 8वें गर्भ के रूप में। उन्होंने कष्ट सहन किए। जब भक्त गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत सेवा करता है, कष्ट स्वीकार करता है, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। जैसे आप सब वैष्णव मिलकर कई हफ्तों से इस जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और आज भी रात 12 बजे तक न केवल आप सेवा कर रहे हैं बल्कि फास्टिंग भी है, साथ में फीस्टिंग भी है, कृष्ण नाम फीस्टिंग है, जैसे भूख लगे हरे कृष्ण फीस्टिंग ऑन द होली नेम। तो आपने इतना कष्ट किया जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए, नए मंदिर के प्रोजेक्ट के लिए, ये वसुदेव और देवकी की तरह है। जैसे देवकी ने कष्ट सहन किए फिर उसके बाद कृष्ण प्रकट हुए, जैसे आप सब वैष्णव कष्ट सहन कर रहे हैं और कुछ समय बाद भगवान राधा वृंदावन चंद्र का नया मंदिर निर्माण होगा। वन हैज टू एक्सेप्ट मिजरीज फॉर कृष्ण, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सफर ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। कृष्ण के लिए तकलीफ सहन करना ये आनंद होना चाहिए। भक्ति में ऐसा नहीं, हम बोलते हैं चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, वो एडवर्टाइजमेंट है शुरुआत के लिए। चांट हरे कृष्ण प्योरली एंड देन यू विल बी हैप्पी, प्योर चैंटिंग, और प्योर चैंटिंग करने के लिए तकलीफ सहन करना। हम देखते हैं ब्रज के गोपियां बिलक बिलक के रोते हैं, चैतन्य महाप्रभु दुख में रोते थे, लेकिन ये दुख भी आनंद है, इस दुनिया का आनंद भी दुख है। हमें प्रसन्नता होनी चाहिए अगर गुरु और वैष्णव और अथॉरिटीज ऐसी सेवा दें जिसमें हमें बहुत बहुत कष्ट सहन करने पड़े, इसका मतलब हम कृष्ण के करीब आ रहे हैं, हम कृष्ण के करीब आ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ऐसे, तुम्हारे सेवाते जईते दुख सहित परम सुख। हे कृष्ण, आपकी सेवा में मुझे जितनी कठिनाइयां हो, जितनी तकलीफें हो, वही मेरे लिए परम सुख है, द ग्रेटेस्ट प्लेजर। जैसे एक माँ को बहुत प्रसन्नता होती है बच्चे के लिए कष्ट सहन करने में, ऐसे जो भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं या करना चाहते हैं तो प्रसन्नता होती है कि इसको मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। हर क्रिया को इस उद्देश्य से करना, इसका अंतिम फल होगा कि कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट होंगे। कृष्ण ऑलरेडी हैं हृदय में, लेकिन सेवा भावना से और हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस सेवा भावना के द्वारा कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है हमें। कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एटीट्यूड। जैसे हम नाम जप करते हैं, जिस भावना से नाम जप करते हैं उसके अनुसार कृष्ण प्रकट होते हैं। एक भक्त के लिए हर दिन, हर माला, हर मोती पे कृष्ण और राधा रानी प्रकट हो रहे हैं। जन्माष्टमी का मतलब है न केवल अभिषेक रात को 12 बजे, बल्कि हर क्षण अभिषेक अपने हृदय में रहने वाले गोपाल के लिए जो अपने नाम के रूप में प्रकट हुए। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम लेने से कृष्ण प्रकट हो, यू मस्ट बी सैचुरेटेड विद सर्विस एटीट्यूड। आपका मन सेवा भावना से इतना मग्न होना चाहिए, नहीं तो आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे। जैसे वो उदाहरण देते हैं एक कैप्सूल का, एक कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, लेकिन कैप्सूल एक कवर है और उसके अंदर दवा है, तो सेम कैप्सूल है, एक में दवाई है और दूसरे में पोटेशियम साइनाइड है, जहर। एक में दवाई है इसको खा के आप ठीक हो जाएंगे, और दूसरे में वो है जिसको खा के आप बता नहीं सकते क्या टेस्ट है, मृत्यु हो जाएगी। तो आज के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी चैंटिंग ऐसे हो जो मेरे हृदय के लिए दवाई हो, मेरे हृदय के रोग को दूर करने के लिए। एनची औषधि माया नाशी बारुणी, मेरा नाम जब इस प्रकार से हो, हे राधा कुंज बिहारी हे गौर निताई, कि मेरा नाम जब इस तरह से हो कि जिससे आपको मैं मैक्सिमम प्रसन्न कर सकूं। संसिद्धिर हरि तोषणम, भगवान हरि को संतुष्ट करूं मैं अपनी क्रियाओं से, अपने वचनों से, अपने मन से। जन्माष्टमी ये एक मेडिटेशन भी है हम सब के लिए। हर वर्ष हम जन्माष्टमी मनाते हैं, इससे हम ये भी समझ सकते हैं जन्माष्टमी से कि मैं हर वर्ष अब और मृत्यु के करीब आ रहा हूँ, मुझे और सीरियस बनना है भक्ति में। मैंने जो 3 वाक्य बताए प्रभुपाद के शुरुआत में, जो आप सब ने ध्यान से सुने, आपको याद है लास्ट सेंटेंस क्या था उसमें से? लास्ट सेंटेंस, बिफोर डेथ कम्स वन मस्ट बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ कृष्ण। मृत्यु से पहले हर जन्माष्टमी हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि मृत्यु से पहले हम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। व्हाट इज फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस? मीन्स हर क्षण कृष्ण को याद करना। और फुल कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है त्रिनादपि सुनिचिये न बनना। फुल कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है 26 गुण वैष्णव के सब प्रकट होना हृदय में। सूर्य का प्रकट होने का अर्थ क्या है? अंधेरा दूर होना। आप ये नहीं बोल सकते सूरज है लेकिन अंधेरा भी है, नहीं, काला सूर्य नहीं होता। कभी कभी देखा किसी ने अंधेरा सूर्य, काला सूर्य, ठंडी अग्नि, आइस फायर, ये कॉन्ट्रडिक्शन। अगर आपके हृदय में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तो सब गुण धीरे धीरे आने चाहिए। यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वे गुणे समासत सर्व, ऑल गुड क्वालिटीज बिकम मैनिफेस्ट। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। यहाँ पर कृष्ण प्रकट होते हैं, वह माया नहीं है। तो ये प्रसंग पे वापस आते हुए, जब देवकी के गर्भ में, देवकी के 8वें गर्भ का समय आया तो उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा और सब देखकर आश्चर्यचकित हुए। एक पॉइंट और जो बताना भूल गया, पहले कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव जी के हृदय में, और फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के मन, देवकी के गर्भ में। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरह से कि कृष्ण का प्रकट होना एक साधारण बालक की तरह नहीं था। आज से करीब 18 साल पहले मैं रिसर्च कर रहा था राधा गोपीनाथ मंदिर में, सब धर्मों का स्टडी कर रहा था, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, वैष्णविज्म, और ज़ोरास्ट्रिज्म। मैंने एक डिवोटी को मदद की थी किताब लिखने में, वन गॉड यूर देर राधेश्याम प्रभु, यूज टू डू राधेश्याम प्रभु के गाइडेंस में मैं कर रहा था। तो उस किताब में हमने कुछ लिखा था कि भगवान अजन्मा है, और मैं मुसलमान प्रोफेसर से मिलने जाता था। तो एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आपके कृष्ण जो है भगवान नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है कि भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन आपके आपके भगवान तो देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं और छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं। तो मैंने उनको समझाया प्रभुपाद जी की पुस्तक के आधार पर कि कृष्ण वास्तव में अजन्म है, हम भी स्वीकार करते हैं। अजोपी सन अव्ययात्मा, अज मीन्स अजन्म, इसका बर्थ नहीं होता, अव्यय डेथ नहीं होता। कृष्ण अपीयर्स टू टेक बर्थ, जैसे यहां बताया गया, जैसे ईस्टर्न होराइजन से चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा से, वैसे ही भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो। यह बात सत्य है कि कृष्ण का कोई माता या पिता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से वात्सल्य रस के आदान प्रदान के लिए कृष्ण वसुदेव और देवकी को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर नंद और यशोदा के यहाँ पर लीला करते हैं, वही कौशल्य और दशरथ के रूप में होते हैं, वही कलयुग में शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के रूप में होते हैं। श्री प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण का कोई नाम नहीं है, लेकिन कृष्ण की लीलाओं से और उनके क्रियाओं से उनके असंख्य नाम हो जाते हैं। कृष्ण को ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, श्याम सुंदर, ब्रजजन रंजन, ये नाम कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये नाम वृंदावन से संबंधित हैं, ये कृष्ण के धाम, कृष्ण के भक्तों से संबंधित हैं। जब कोई कृष्ण को बोलता है परमात्मा, जगदीश, हरे, तो भगवान टॉलरेट करते हैं, चलो ठीक है, व्हाट टू डू, इट्स ओके, ऑलराइट। कृष्ण नॉट हैप्पी, कृष्ण का बोलते यशोमती नंदन ब्रज जन गोकुल रंजन काना, कृष्ण को अच्छा लगता है, नेचुरल नेम्स। जैसे कोई हाई कोर्ट जज को अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में एड्रेस कर रहा है, योर ऑनर, है ना, आप जी महाशय, योर ऑनर, बड़े आदर के साथ कह रहे हैं, जी हजूर, जी खजूर, बड़े आदर से कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट जज सहन कर रहे हैं, यस मेरा आदर कर रहे हैं, क्योंकि इसको तनख्वाह मिलनी है मेरे से ही, अगर ये आदर नहीं करेंगे तो इसको नौकरी नहीं रहेगी, इसलिए मेरा आदर कर रहे हैं, मेरे से प्रेम नहीं कर रहे। लेकिन जब घर में जाते हैं और उनके परिवार के लोगों को थोड़ा डांटते हैं प्रेम से, तो बहुत खुश हो जाते हैं, इंटीमेसी ज़्यादा होती है। ऐसे कृष्ण को ब्रज लीला सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वहाँ पर इंटीमेसी। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये कृष्ण के प्राइमरी नाम से, यशोदानंदन कृष्ण सबसे बेस्ट नाम है। कृष्ण कृष्ण जब देवकी के घर में प्रकट हुए तो सारे और उजाला हो गया, सब पूरा तेजस्वी हो गया, कंस भी समझ गया ये मेरा काल प्रकट हो गया। एक्चुअली कंस को मालूम था मैं मरने वाला हूँ, कितना बुद्धिमान था कंस, देखो उसको मालूम था मरने वाला हूँ, फिर भी वो अगर वो जाके बोलता है श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो बहुत अच्छा होता, उसको अपना राज्य भी मिलता और सब लोग बोलते कृष्ण के साथ कंस महाराज की जय। कंस को मालूम था, he was fearful, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति शरण में नहीं आ रहा। चार प्रकार के लोग होते हैं, नमाम दुष्कृतु नम बूढ़ा प्रपद्यन्ते नराध, they just don't want to surrender। जैसे कुत्ते की पूंछ है और टेढ़ी रहती है, उसको सीधी करो, आयरन करो, फिर टेढ़ी हो जाती। कंस नहीं समझ सकता, तो मन में सोचने लगा कि मुझे मार देना चाहिए बालक को या देवकी को मार देना चाहिए, पहले से देवकी को मारना चाहिए, फिर सोचने लगा नहीं, देवकी मेरी बहन है, पहली बात वो स्त्री है, शास्त्र के नियम के अनुसार कभी भी स्त्री को नहीं मारा जाता, युद्ध में भी आप जानते हैं भीष्मदेव और शिखंडी, भीष्मदेव इसलिए शिखंडी के ऊपर तीर नहीं चलाते क्योंकि शिखंडी पूरे जन्म में स्त्री था, जो पूरे जन्म में स्त्री था उसको भी नहीं मारना चाहिए, जो इस जन्म में स्त्री है उसका क्या बोलना है। इसको नहीं मारना चाहिए। तो कंस हालांकि बहुत बदमाश था, मूर्ख था, लेकिन वो भी थोड़ा एटिकेट जानता था, एटलीस्ट कुछ अंश तक। दूसरे कारण वो मेरी बहन है, एक साधारण स्त्री की बात अलग, वो मेरी बहन है, और तीसरी कारण वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसको कैसे मार सकते। और चौथा कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कंस न्यू, कंस जानता था अगर मैं देवकी को मारूंगा तो बहुत मेरे पूरे यदुवंश में जो अलग अलग फैक्शंस हो जाएंगे, सब लड़ाई पैदा हो जाएगी, क्योंकि देवकी वो भी उसी इलाके के हैं, पूरा एरिया जो यदुवंश भोज वंश अंधक वंश उसमें है, इसलिए कंस ने मारा नहीं। लेकिन कंस हर समय कृष्ण को याद कर रहे थे, जागते हुए उठते हुए सोते हुए, खाली जन्माष्टमी के दिन नहीं, हर दिन। कंस से भी हम सीख सकते हैं, कंस नींद में भी कृष्ण को याद करते थे, ड्रीमिंग में भी। आप में से कितने हैं इनको सपनों में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं? लेकिन उनका जो मेडिटेशन था वो भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति का मतलब है अनुकूल सेवा। रूप गोस्वामी डेफिनेशन देते हैं भक्ति का, अनुकूल न कृष्णा अनुशील, एक्ट फेवरेबली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, दैट इज डिवोशनल सर्विस। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल रूप से कार्य करना, वो कृष्ण भक्ति। इसलिए कंस की चेतना को भक्ति नहीं कहा जा सकता, हालांकि जरूर उसका बहुत शुद्धिकरण हो गया कृष्ण को याद करने से। जैसे कंस एक कितने प्रयास करने पर भी अंत में वो कृष्ण को मार नहीं सके, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इस्कॉन मूवमेंट ये कृष्ण का ही अवतार है। इस युग में कृष्ण प्रकट हुए ये हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में, हरे कृष्ण मूवमेंट कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए बहुत सारे कंस हैं जिसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, अरे कंस अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन ये मार नहीं सकेंगे, ये नहीं मार सकेंगे, कोई रोक नहीं सकता इस आंदोलन का। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ डिवोटीज आर सिंसियरली चैंटिंग हरे कृष्ण एंड फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स देन दिस मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल। अगर डिवोटीज नियम पूर्वक चार नियम पालन करते हैं और ध्यान पूर्वक अटेंटिवली गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो कोई इस आंदोलन को रोक नहीं सकता फैलने से। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये कृष्ण नाम का आंदोलन है। जब देवताओं को पता चला कि कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं तो अनेक रूप से आकर वो स्तुति करने लगे और वो वसुदेव और देवकी को भी सांत्वना देने लगे, कंसोल करने लगे कि आप चिंता मत करो, इस समय जब बालक है वह स्वयं कृष्ण है, उसको कोई डर नहीं है। इसके बाद ये प्रसंग आता है जो आज के दिन का है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आज के दिन का मौसम, एट द ऑस्पिशियस टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड द एंटायर यूनिवर्स वॉज सरचार्ज विद क्वालिटीज ऑफ गुडनेस ब्यूटी एंड पीस। सब वातावरण बहुत सुंदर था, सत्व गुण सुंदरता से शांति से भरा हुआ। व्हाट वॉज द कॉन्स्टलेशन? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ अश्विनी तारों के साथ, सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे सब शांत थे और सारे दिशाएं मनोहर लग रहे थे। ब्यूटिफुल स्टार्स ट्विंकल्ड इन द क्लाउडलेस स्काई, सुंदर जो तारे हैं वो चमक रहे थे और पूरी धरती मंगलमय लग रही थी और साफ पानी बह रहा था और कमल के फूल खिले हुए थे और वृक्ष और हरे पौधे सब फूलों से और पत्तियों से भरे हुए थे। कोयल और भंवरे गुनगुना रहे थे देवताओं की प्रसन्नता के लिए मीठी आवाज़ों में। एक प्योर ब्रीज चल रही थी, अच्छी हवा चल रही थी, सब जाग भी रहे थे। नींद तो नहीं आ रही ना सबको? ये बहुत सारे बारिश के कारण पता नहीं चलता कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, इसलिए मैंने देखा सब लोग पहले बारिश के पीछे वाले सीट पहले भर गए और बाद में यहाँ वाले। और कई डिवोटी रात को सोए भी नहीं, बहुत सेवाएं थी इसलिए कोई सो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में जागते रहिए और बोलते रहिए हरी हरी। ये तो सिर्फ मॉर्निंग सेशन है, मैं कहानी बताऊंगा जिससे आपका उत्साह बढ़ जाएगा। यू नो दैट स्टोरी एवरी ईयर, यू नो मैं बोलता हूँ एवरी ईयर, आपने सुना होगा। प्रभुपाद जब कृष्णा बुक सुन रहे थे, यू नो दैट स्टोरी, जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में भक्तों को बोले, न्यू वृंदावन एक बड़ा सेंटर है, और रात को 11 बजे सब डिवोटी थके हुए थे, बोले नाउ वी विल रीड कृष्णा बुक। और मैं या आप बोलें तो आप सब बहाना करके आई एम बिजी, दूसरी सेवा है, और जाकर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोले थे यू कैनॉट डिसोबे, सब डिवोटीज बैठे और सन्यासी भी बैठे और पहला अध्याय पूरा हुआ एडवेंट ऑफ कृष्णा, दस एंड्स द भक्ति वेदांत पर्पट द फर्स्ट चैप्टर द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और सब डिवोटीज बोले श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रभुपाद सुन रहे थे ध्यान से, उन्होंने आंखें खोली और बोले नेक्स्ट चैप्टर। प्रभुपाद बोल रहे हैं तो सुनने लगे प्रेयर्स बाय द डेमी गॉड्स, प्रार्थनाएं। और सन्यासी पहले, सन्यासी जब सोते तो तुरंत मालूम पड़ता क्योंकि दंडा गिर जाता अक्सर। इसलिए धीरे धीरे नींद आने लगी। फिर भी जब सेकंड चैप्टर खत्म हुआ द सेंस सेकंड चैप्टर द प्रेयर्स बाय द डेमी गॉड्स, सब बोले श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ही बोले नेक्स्ट चैप्टर। और धीरे धीरे 12 बज गए, फास्ट ब्रेकिंग का समय हो गया। अब प्रभुपाद जी का उत्साह बढ़ता जा रहा था। 8-10 चैप्टर हो गए और चैप्टर के एंड में बोलते हैं दस एंड भक्तिवंत परपट सब प्रभुपाद की, कोई जय कोई बोल ही नहीं रहा था। नो यूज। और एंड में प्रभुपाद ने देखा सबको बहुत थकावट हो गई है, सो यू आर ऑल वेरी टायर्ड एंड हंग्री, यू विल स्टॉप हियर। सब बोले जोर से श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन वो रात के 12 बजे था, अभी तो दिन के भी नहीं। प्लीज इंक्रीज माई enthusiasm by your enthusiasm. एक्चुअली फैक्ट है, ये कृष्ण कथा है ना, ये भगवान का अवतार होता है, इट इज नॉट स्टैटिक। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो कृष्ण आएंगे ही नहीं। अगर सुनने वाले बहुत उत्सुक हो और बोलने वाला उत्सुक हो तो ही कृष्ण प्रकट होते। हर दिन जब आप ये 10th कैंटो पढ़ते हो या कृष्ण की कोई लीला पढ़ते हो तो कृष्ण प्रकट होते हैं। यू मस्ट नो दैट एक्चुअली कृष्ण इज अपीयरिंग। कृष्ण कथा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो वातावरण बहुत सुंदर था, अच्छी हवा बह रही थी और सबके मन को बहुत आनंद हो रहा था। ब्राह्मणों की अग्नि कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, ये राक्षसों के प्रभाव के कारण जो सैक्रिफिशियल फायर जिसमें यज्ञ करते हैं वो बंद हो गई थी, लेकिन अब वो अग्नियाँ फिर से प्रज्वलित होने लगे। और उस समय अजन्मा भगवान विष्णु जब प्रकट होने वाले थे तो ऋषि मुनि के मन में बहुत आनंद हुआ और देवता ऊपर से फूलों की बरसात करने लगे, हरी हरी, और वो जय जयकार करने लगे। किन्नर और गंधर्व गीत गाने लगे और सिद्ध और चारण प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे और अप्सराएं और विद्याधर डांस करने लगे बड़े आनंद के साथ। उसके बाद आज का श्लोक है जो हमने अभी श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ा। ये वॉल्यूम स्पेशली इम्पॉर्टेंट है 10th कैंटो का, क्योंकि प्रभुपाद जी का आखिरी कैंटो था जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया। 10th कैंटो के 13 अध्याय पूरे किए। जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे उस समय वृंदावन में थे अपने आखिरी दिनों में, उनके शरीर इतना कमजोर था कि वो मंदिर में उनको चल नहीं सकते थे, उनको पालकी में ले जाते थे, वो चरणामृत उनके मुंह में दिया जाता था। लेकिन उनकी चेतना इतनी क्लियर थी, इट वॉज सो क्लियर इन हिज थिंकिंग। वो लेटे हुए ट्रांसलेशन करते अपने रूम्स में, अपने वृंदावन में प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स देखे होंगे, उन क्वार्टर्स में लेटे हुए प्रभुपाद में डिक्टाफोन में ट्रांसलेट कर रहे थे और वेरी क्लियर एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ कृष्णा, ऐसे वो ट्रांसलेशन में बता रहे। इसलिए ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद अपनी ऑलमोस्ट यू कैन से ही वॉज ऑन दिस डेथ बेड ऑलमोस्ट, फिर भी प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया ये पुस्तक का। इसलिए प्रभुपाद जी आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि देवता ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे थे और आकाश में जो बादल थे वो मंद मंद गरज रहे थे प्लेजेंटली। जनरली बादलों की थंडर जो है वो भयानक स्थिति पैदा करती है, जोर से गरजे तो, लेकिन बट देवर जस्ट रंबलिंग माइल्डली, जैसे कि सागर की लहरें भी हल्के हल्के चल रहे थे। और उस समय कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। प्रभुपाद जी बोलते हैं बिकॉज शी वाज ऑफ द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ कृष्ण, देवकी कृष्ण के श्रेणी में थे। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन बताते हैं आनंद चिन्मय रसा प्रतिभा बीताबीस ताभीर य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये कृष्ण और कृष्ण के सारे पार्षद सेम कैटेगरी के हैं। ब्रह्मा विमोहन लीला में सिद्ध हुआ था कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को ले गए तो कृष्ण ने वैसे ही रूप धारण कर लिए, सब विष्णु मूर्ति थे। यहां बताया गया देवकी इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, देवकी भी भगवान कृष्ण के विस्तारित स्वरूप है। और यहां बताया गया कि पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण अष्टमी है, शुक्ल पक्ष सॉरी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो पूर्ण चंद्रमा कैसे प्रकट हुआ। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चंद्र को इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान कृष्ण मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं, भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट हुए और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में, उनको इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आनंद हुआ कि कृष्ण पक्ष में होने के बावजूद वो पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया। ही वाज वेरी हैप्पी जुबिलिएशन, इतने प्रसन्न थे। यहाँ पर एक और चीज बताई गई है, भगवान के लिए अंतर्यामी शब्द यूज किए, अंतर्यामी सर्व गुहा शय, सर्व गुहा शय, सबके हृदय में जो रहने वाले भगवान हैं वो कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसका मतलब कृष्ण ऑलरेडी हैं सबके हृदय में, अपनी इच्छा से प्रकट हो गए। कृष्ण कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, विशेष करके अपने भक्त जो माता और पिता के रूप में लीला कर रहे हैं उनसे वो उनके सामने प्रकट हुए। ही इज सिचुएटेड इन मथुरा इन वैकुंठ एंड इन द कोर ऑफ द हार्ट, भगवान मथुरा में है, वैकुंठ में, सबके हृदय में भी हैं। और विशेष करके जहाँ पर भक्त नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहाँ पर भी भक्त नाम कीर्तन करते हैं वहाँ पर कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव जी ने बालक को देखा, इसके चार हाथ थे, शंख चक्र गदा और पद्म, उनके आंखें कमल के समान, उनके वक्षस्थल पर शिवत्स का निशान, कस्तुभ मणि और पीतांबर वस्त्र पहने हुए, बहुत सुंदर बाल और हेलमेट, सोने के आभूषण, वैदुर्य मणि। अरे कई बार लोग अपने आप को भगवान कहते हैं लेकिन जब जन्म लेते हैं तो बड़ा विचित्र रूप होता है। आपने कभी देखा है किसी नर्सिंग होम में कोई बच्चा पैदा हुआ शंकर चक्र धारण करके, घुंघराले बाल। पूना में एक भगवान थे, बेचारे भगवान अभी मर गए शायद। तो प्रभुपाद जी उनके बारे में बोलते हैं कि भगवान का एक नाम है केशव, ब्यूटीफुल हेयर्स। कृष्ण के न केवल बड़ी उम्र में, बचपन में पैदा होते ही बाल थे, लेकिन ये भगवान के बाल ही नहीं थे। तो ये भगवान पहले से ही भगवान है, इसलिए भगवान पहले ही रूप में प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए। शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए, बरहावतम असा सुंदर अंगम। प्रभुपाद जी बोलते हैं द ह्यू ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म इज लाइक ब्लैकिश कलर, डेंस क्लाउड्स, असित बरहावतम अंशम असित अंबुद, असित असित मीन्स, असित बोलते हैं ब्लैक और अंबुद यानी क्लाउड्स, द ब्लैक मॉनसून क्लाउड, कृष्ण का कलर जो मॉनसून क्लाउड, फ्रेश मॉनसून क्लाउड की तरह है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेयर डू वी फाइंड अ चाइल्ड बॉर्न विद ग्रोन हेयर एंड विद फोर हैंड्स, तो कोई बालक दिखाई नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कृष्ण का जन्म साधारण नहीं है। ये वैदुर्य मणि, वैदुर्य मणि कभी कभी ब्लूइश होती है नीले रंग की, और कभी कभी पीली होती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी लाल होती है। और ये कहाँ पर मिलती है, वैकुंठ लोक में मिलते। वसुदेव जी ने इस बालक को देखा तो सोचा मेरा धन्य, मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे कुछ दान देना चाहिए, लेकिन कुछ था ही नहीं, जेल में क्या डोनेशन देंगे, जेल में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने मन ही मन 10,000 गाय दान किए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर अगर कुछ नहीं हो तो मानसिक रूप से दान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे धन रखो और मंदिर में मानसिक रूप से दान भेज दें, मेंटल चेक, यू नो, मेंटल डोनेशन। फिर मृत्यु के समय भी आप यमलोक जाओगे और मानसिक रूप से आप वैकुंठ याद कर। इफ यू हैव द एबिलिटी वी शुड गिव फिजिकली ऑल्सो, आई एम डूइंग सम फंड रेजिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद कथा, वी शुड गिव टिल द लास्ट ब्रेथ। बाइबल में कहा गया गिव अंटिल इट पेन्स, जब तक दर्द हो तब तक देना चाहिए कृष्ण को। लेकिन वसुदेव के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से दान दिए। अब इसका पर्पस बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी से इज कोटिंग फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सब लोग जाग रहे हैं ना, यस। ऐसे बोलने से क्या होगा कि जाग रहे हैं हरि बोल बोलिए और जो सो रहे होंगे वो भी जाग जाएंगे। वसुदेव जी ने जब बालक को देखा तो उसके बारे में चक्रवर्ती ठाकुर ही इज कॉमेंटिंग, ही इज एनालाइजिंग द वंडर ऑफ वसुदेव अपॉन सीइंग द एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड। फर्स्ट थिंग इज वसुदेव वॉज शिवरिंग विद वंडर, वो कांप रहे थे ये बालक को देखकर, ये सारे गारमेंट्स और जेम्स के साथ वो तुरंत समझ गए कि ये भगवान प्रकट हुए हैं। फर्स्ट वंडर वॉज दैट द लॉर्ड वॉज नॉट अफ्रेड टू अपियर विद इन द प्रिजन हाउस ऑफ कंस। पहली अद्भुत चीज क्या थी कि कृष्ण घबराए नहीं वसुदेव जी के जेल में प्रकट होने, घबराए नहीं, ही इमीडिएटली अपियर्ड एज अ 400 फॉर्म। सेकेंड, ऑल्दो द लॉर्ड इज सुप्रीम ट्रांसेंडेंस ऑल परवेडिंग, ही हैड अपियर्ड फ्रॉम द वूम ऑफ देवकी। कृष्ण सर्वव्यापी हैं और वो माता के गर्भ से प्रकट हुए। कृष्ण के मुंह में यशोदा माता ने पूरा ब्रह्मांड देखा था और वो कृष्ण देवकी के गर्भ से कैसे प्रकट हो गए, ये अद्भुत चीज है। नहीं, जैसे मैंने कवर के अंदर चश्मा रखा है तो चश्मे में कवर नहीं हो सकता है कि नहीं, अगर डब्बे में आपने लड्डू रखा है तो लड्डू में डब्बा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कृष्ण के अंदर सारा ब्रह्मांड है और फिर कृष्ण एक ब्रह्मांड के अंदर एक जीवात्मा के अंदर कैसे आ सकते हैं, इसका मतलब यशोदा देवकी के गर्भ में कृष्ण है और कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, उसका मतलब उसके अंदर देवकी भी है, उसके अंदर कृष्ण भी है, उसके अंदर देवकी भी है। जैसे आप दो मिरर्स रखते हैं ना तो इन्फिनिट इमेजेस हो जाते हैं, है ना, जैसे इन फिजिक्स में आपने पढ़ा है, एक दो इमेज को 180 डिग्री एक आमने सामने रखो तो एक का इमेज दूसरे पे तीसरे पे, ऐसे कृष्ण के हृदय में, कृष्ण के अंदर सब पूरा ब्रह्मांड है लेकिन कृष्ण देवकी के गर्भ में, दिस इज अचिंत्य। ऐसे भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो अचिंत्य, एक्चुअली एवरीथिंग इज अचिंत्य, कृष्ण की हर एक चीज अद्भुत है। वो कृष्ण जो पूरे दुनिया को दान देते हैं, वो कैसे गोपियों के पास जाकर मिठाई मांगते हैं, गोपियां बोलते हैं कृष्ण अगर आप डांस करोगे तो स्वीट मिलेंगे, तो कृष्ण बोलेंगे सब ब्रिजवासी स्वीट शॉप मेरे ही हैं, मुझे क्या चाहिए। बट कृष्ण अपीयर्स टू बिकम अ बेगर। वो कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं, वो ये नहीं जानते कि राधा रानी का प्रेम का स्वभाव क्या है, इसलिए वो गौरंग महाप्रभु के रूप में आते। वो कृष्ण जिसको देखकर ब्रह्मा शिव जी भी थर थर कांपने लगते हैं, वायु अग्नि चंद्र सूर्य सब प्रणाम करते हैं, और वो कृष्ण यशोदा माता की छड़ी से डर रहे हैं। नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब को दूर कर देते हैं लेकिन छड़ी से डर रहे हैं, साधारण लकड़ी की छड़ी से, यू नो, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ही बिकम्स कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटीज। सबसे बड़ी अद्भुत चीज है कृष्ण की, ये कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, यही ब्रज भक्ति है, जहाँ पर कृष्ण ऐश्वर्य के भाव से मुक्त हैं। डिवोटी से नहीं सोच रहे कृष्ण, देवकी और वसुदेव के अंदर अभी ऐश्वर्य की भावना है, वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं वो, लेकिन यशोदा माता ये नंद और ब्रज की गोपियों इनका प्रेम और भी ज़्यादा ऊंचा है, शुद्ध ब्रज भक्ति। थर्ड पॉइंट अ वंडर वॉज दैट अ चाइल्ड कुड टेक बर्थ फ्रॉम द वूम सो नाइसली डेकोरेटेड। माता पिता के गर्भ से बालक निकला, जनरली बालक निकलने के बाद उसको स्नान कराना और सब चीज़ें निकालना, उसके बाद फिर यू नो वस्त्र पहनाना, लेकिन यहाँ पे फुली डेकोरेटेड, ये बड़े अद्भुत चीज़ है। फोर्थ रीजन, सुप्रीम लॉर्ड वॉज वसुदेव वर्शिपेबल डीटी, येट ही हैड टेकन बर्थ एज ए सन। भगवान वसुदेव जी के इष्ट देव हैं और पुत्र के रूप में आए, इसलिए वसुदेव जी जो है बहुत प्रसन्न भी हुए, आश्चर्यचकित हुए। वसुदेव जी समझ गए ये बालक भगवान है और वो बिल्कुल निडर हो गए, उन्होंने प्रणाम करना शुरू किया भगवान को। मैं थोड़ा अभी लीलाओं की तरफ जाऊंगा क्योंकि प्रार्थनाएं बहुत डिटेल में हैं, लेकिन शॉर्ट में वो भगवान को स्तुति कर रहे हैं परम पुरुष के रूप में। वो कह रहे हैं कि भगवान मैंने अब जान लिया कि आप ही सर्व कारणों के कारण हो, आप ही भगवान हो, आप ही सृष्टि के रचयिता हो और आपसे ही महत्त्व प्रकृति के 8 धातु सब आपसे ही प्रकट होते हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप आकर शत्रुओं के सारी सेनाओं को नष्ट कर दोगे, यू विल किल द आर्मीज दैट आर मूविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पॉलिटिशियन हु आर ड्रेस्ड एज क्षत्रिय रूलर्स बट हु आर फैक्चुअली डीमंस। जो असुर हैं लेकिन भक्तों के वेश में घूम रहे हैं, उनको आप जरूर आप उनकी रक्षा करोगे। हे भगवान, अब थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, कंस किसी भी क्षण आ सकता है। उसको पता है कि आपका जन्म होने वाला है और उसने आपके 6 बड़े भाइयों की हत्या कर दी है, वो जरूर यहाँ पर आ जाएगा आपका वध करने के लिए भी। अब प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी आप गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण आप सब कारणों के कारण हो, आप भगवान हो, और अभी बोल रहे हो अभी कंस आएगा आपको मारने के लिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन लगता है नहीं। तो व्यक्ति को आप बोलें कि आप सर्वशक्तिमान हो, अब बाद में बोलें कि ये व्यक्ति आपको पराजित करने आ रहा है, सावधान हो जाइए। तो प्रभुपा ये कॉमेंट करते हैं इस पर, ऑल दो कृष्ण कैन नॉट बी किल्ड, वसुदेव एज द फादर ऑफ कृष्ण वॉज ट्रेम्बलिंग बिकॉज इन अफेक्शन ही थॉट दैट कंस वुड कम एंड किल हिज सन। सिमिलरली ऑल दो द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एंड कृष्णा आर नॉट डिफरेंट एंड नो असुर कैन चेक इट, बट वी आर अफ्रेड दैट एनी मोमेंट असुरास विल कम टू ट्राई टू स्टॉप दिस मूवमेंट। समझ में आया आपका? श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे वसुदेव जी को डर लग रहा है, ऐसे हमें भी डर लगता है कि कोई इस्कॉन के कार्यों को रोके नहीं। हम जानते हैं कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें लड़ना होता है कोर्ट केसेस में या अलग अलग तरीके से। इसके बाद देवकी वो भगवान को स्तुति अर्पण करने लगी। आप इन प्रार्थनाओं को दिन के समय जब आपको समय मिले तो ध्यान से पढ़िए, बहुत डिटेल प्रार्थनाएं जो दिखाते हैं कि देवकी को पता था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड थे। अब मैं एक रहस्य आपको बताऊंगा, ये देवकी के प्रार्थनाओं से है, ध्यान से सुनिए। लास्ट श्लोक है देवकी के प्रार्थनाओं का, आखिरी श्लोक है। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, जब प्रलय का समय आता है, जब पूरा जगत पानी में अप्लवित हो जाता है, उस समय सब कुछ आपके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन वो रूप जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, वो रूप मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है, कोई भरोसा नहीं करेगा, पीपल विल नॉट बिलीव इट एंड आई विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। लोग रिडिक्यूल को क्या बोलते हैं? रिडिक्यूल मजाक करना, हास्यपात बनना, हास्य का कारण। तो अभी ये जो भक्त प्रेम के भावना से होता है, ऐश्वर्य शीतल भक्ति, वो भगवान के भगवान के रूप को देखकर भी सोचता है कि भगवान नहीं है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में भगवान का रूप है मुरलीधर कृष्ण, मुरलीधर यानी जो मुरली धारण किए, ये रूप वृंदावन वासियों को बहुत प्रिय है, उनको विष्णु का रूप प्रिय नहीं है। रासलीला के बीच में से कृष्ण अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए, और गोपियां ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर दिया, जिससे कि गोपियां जब आएंगे तो वो पहचान नहीं सके। तो गोपियों ने देखा, ओ नारायण, नमो नारायण, कृष्ण गोथा गेला, वेयर इज कृष्ण। कृष्ण ने अपने 4 हाथों से बोला, कृष्ण इधर गए। यानी हम नारायण को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कृष्ण में है, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्ण, हमारे प्रेम के विषय कृष्ण। फिर श्रीमती राधिका आए, राधा रानी का प्रेम इतना महान है, तो सारे प्रेम के सागर हैं। तो राधा रानी ने, जैसे कृष्ण ने राधा रानी को देखा, तो कृष्ण के 2 एक्स्ट्रा हाथ सब पिघल गए, श्याम सुंदर कृष्ण बन गए। यहाँ भी डिवोटी जब आएंगे पहले बालाजी को देखेंगे और पूछेंगे, वेयर इज कृष्ण? तो कुंज बिहारी अंदर है, कुंज बिहारी कस। बालाजी भी भगवान का रूप है, लेकिन वैष्णव का जो कृष्ण का रूप जिसमें हमारा विशेष इंटरेस्ट है, वो है राधा रमन कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, गोपीनाथ कृष्ण, कुंज बिहारी कृष्ण, वनमाली कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोविंद कृष्ण, जो कृष्ण जिनके आंखों में जिनके हाथों में मुरली है। वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समासितम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान गोविंद मादि पुरुषम। भगवान का रूप है जो कोटि कोटि कंदर्पों को भी मोहित करने वाला, वो रूप में हमें विशेष इंटरेस्ट है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कि देवकी वृंदावन के स्तर पर नहीं है, देवकी की भक्ति यशोदा के लेवल पर नहीं है, यशोदा की भक्ति वृंदावन ब्रज भक्ति है, बट शी इज नियर द वृंदावन प्लेटफॉर्म, वृंदावन प्लेटफॉर्म के पास में है। वृंदावन प्लेटफॉर्म पर कृष्ण की माता है यशोदा, और मथुरा और द्वारका प्लेटफॉर्म पर कृष्ण की माता है देवकी। कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में और भी पूर्ण है, और वृंदावन में पूर्णोत्तम है, परफेक्ट मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट। द्वारका धाम पूर्ण है, उससे पूर्ण मथुरा है, और मथुरा से पूर्ण वृंदावन है। ये वृंदावन की विशेषता है। सब वैष्णव इसलिए वृंदावन को अपना घर मानते हैं। वृंदावन इज माई होम, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, टेक शेल्टर ऑफ वृंदावन। भक्ति के पांच स्टेजेस हैं, शांतरस और दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य। तो देव की वात्सल्य रस में है, तो वह कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपका विष्णु रूप निकाल दो। विश्वनाथ जी ठाकुर इस पर एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति, भगवान और भक्त ये इस दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, ये ट्रांसेंडेंटल है। स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्णा बेरिंग अ फ्लूट इन हिज हैंड्स इन व्रजभूमि इज डिस्क्राइब्ड एज मधुरी विराजते, मधुरी विराजते। कृष्ण जो मुरली धारण कर रहे हैं सबसे आकर्षक है। वन हु इज मोस्ट सब्लाइमली अट्रैक्टेड इज राधा रानी, सबसे ज़्यादा आकर्षक राधा रानी होते हैं। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं बताया गया है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, एक्चुअली हाउएवर राधिका कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्ड आराधना विच इंडिकेट्स दैट शी एंजॉयज द हाइएस्ट लविंग अफेयर्स विद कृष्ण। कृष्ण के प्रेममय का सबसे ऊंचा विषय राधा रानी आराधना करते हैं, आराधना करने वाले, इसलिए आराधना राधा रानी का एक नाम है, आराधना। अन्याराधित नूनम भागवत में इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। क्यों उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला? क्योंकि वो इतने बड़े प्रेमी भक्त थे, और कई लोग सुनने वाले में से ज्ञानी और योगी भी थे जो नहीं समझ पाते थे, और दूसरा वो इतने एडवांस डिवोटी थे, अगर एक बार वो राधा रानी का नाम लेते तो प्रेम में एक्सटेसी में आ जाते और वो बेहोश हो जाते और प्रवचन वहीं खत्म हो जाता। अभी शायद आप से सोचते तो बहुत अच्छा नहीं। जनरली हम सोचते कि टाइम हो गया है तो, यू नो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने हाई लेवल पर थे इसलिए राधा रानी का नाम बोला ही नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला। एक्चुअली राधा रानी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हम हरे बोलते हैं फिर कृष्ण बोल, हरे मतलब राधा रानी, जो कृष्ण के मन को हर ले वो है राधा रानी। हरे हरे कृष्ण के मन को चुरा ले। जब हम हरे बोलते हैं या राधे बोलते हैं तो कृष्ण आकर्षित होते हैं, जब कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी आकर्षित होते। जैसे कोई र बोलता है तो कृष्ण उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं कि शायद राधा बोलेगी वरना। इसलिए आज जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो राधा रानी का नाम पुकारना चाहिए, राधे राधे। आप ऐसे बोलो जैसे निर्जल व्रत रखा हो, निर्जल तो है लेकिन अभी तो 12 भी नहीं बजे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी राइट शेयर, प्रभुपाद राइट शेयर, राधा रानी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वर्ड आराधना, आराधना शब्द से राधा रानी को पता चल सके। तो देवकी ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि आप अपना ये चतुर्भुज रूप बंद कर दो और द्विभुज रूप दिखाओ, नहीं तो कंस समझ जाएगा। अब भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, श्री भगवान उवाच, नहीं रिपीट मत करिए, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भुव सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिर अकलमश्य। भगवान बोले हे माता, पूर्व जन्म में स्वयं भुव मन्वंतर के समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी, और वसुदेव जी का नाम था सुतपा, सुतपा। तो आप मेरे शाश्वत माता और पिता हो। भगवान की लीला नित्य है, कोई ना कोई ब्रह्मांड में अब कृष्ण का लीला हो रही होगी, जन्म हो रहा होगा, फिर कुछ समय बाद कृष्ण दूसरे ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में पूतना का वध करेंगे और दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा होगा, फिर बाद में जहाँ पर पूतना वध हो गया वहाँ तृणावर्त वध होगा, और जहाँ जन्म वहाँ पूतना वध होगा, और तीसरी जगह पर जन्म हो रहा होगा। जैसे एक कोई फिल्म होता है, उसके अलग 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 स्लाइड्स होते हैं, उसमें अलग अलग फोटो हैं और वो गोल घुमाने पे पूरा कंप्लीट दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं कृष्ण जन्म ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं पूतना को मार रहे होंगे, कहीं ना कहीं तृणावर्त को मार रहे होंगे, कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध में लड़ रहे होंगे। जैसे कहीं ना कहीं अभी दोपहर के 12 बजे होंगे, कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा होगा। ऐसे कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में कोई ना कोई भाग है जहां पर कृष्ण की लीला अभी चल रही है। कहीं पर पूतना लीला, कहीं बकासुर वध की लीला, कहीं जन्म लीला, सब जगह पर। इसको बोलते हैं नित्य लीला, लीला जो हमेशा चलती रहती है। भगवान बोले वसुदेव और देवकी को कि तुम पूरे जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे, और जब ब्रह्मा जी ने तुमको आज्ञा दी कि तुम संतान पैदा करो, तब तुमने तपस्या करना शुरू किया और बहुत तपस्या, बरसात, गर्मी, ठंडी और सब तकलीफ सहन किए योगा आसन के साथ। और सिर्फ वो खाते क्या थे, सूखी हुई पत्तियाँ, जो लीव्स गिर गए हैं वही खाते थे, और हवा, बस दो चीज़ें। आज के दिन हमारे लिए भी मेडिटेशन है, नहीं यहाँ तो पत्तियाँ है ही नहीं और बस हवा, उससे संतुष्ट रहते हैं। ऐसा करने ऐसे तुमने इतनी तपस्या की और सारा हृदय जो है गंदगी से मुक्त हो गया। और उस समय 12,000 साल तुमने तपस्या की मेरे को प्राप्त करने के लिए, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं कृष्ण के रूप में आया और पूछा, हे वसुदेव, सॉरी हे वृष्णि और सुतपा, तुम वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा उन्होंने, कि आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और उसके बाद फिर तुमने तपस्या की, उस समय मैं आपके पुत्र के रूप में आया। त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ प्रश्नी और सुतपा से, और उनका नाम था प्रश्नी गर्भ, ये भगवान का एक अवतार था। अगले अवतार में तुम्हारा जन्म हुआ अदिति और कश्यप के रूप में, और मैं आपके पुत्र के रूप में था और मेरा नाम था वामन देव। अब तीसरे जन्म में मैं तुम्हारे पास फिर से आया हूँ कृष्ण के रूप में। मैंने पहले तुम्हें चतुर्भुज रूप दिखाया तुमको याद दिलाने के लिए। अगर मैं साधारण बालक के रूप में आता तो मैं विश्वास नहीं होता कि भगवान विष्णु स्वयं आए हैं। तुमने हमेशा मेरा चिंतन किया, हमेशा मेरी भक्ति की है, इसलिए तुम प्रेम से भरे हुए हो, और निश्चित ही तुम वापस भगवान के धाम, मेरे धाम लौटोगे। इस तरह कहने के बाद कृष्ण शांत हो गए और छोटे बालक बन गए, द्विभुज रूप, टू हैंडेड फॉर्म। उस समय योगमाया का जन्म हुआ। एक्चुअली योगमाया का जन्म कहां पर हुआ, गोकुल में, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ और बताते हैं। वो बताते हैं कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ, मथुरा में या गोकुल में, दोनों जगह पर हुआ। जो वासुदेव कृष्ण हैं उनका जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन वृंदावन विहारी कृष्ण जो हैं वो गोकुल में जन्मे। तो गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पर एक पुत्र और पुत्री हुई। वो पुत्र थे कृष्ण, कौन से कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वासुदेव कृष्ण नहीं, और वो पुत्री थी योगमाया। तो वसुदेव जी के यहाँ पे जो कृष्ण प्रकट हुए वो वासुदेव कृष्ण, और ये वासुदेव कृष्ण को वसुदेव जी लेकर गए। कंस के सारे जेल कीपर सब सो गए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म पर सब सो गए थे और सब बेड़ियाँ खुल गई। कंस के जेल कीपर सो गए थे, मैंने ये नहीं बोला कि आप सोइए, हरी हरी, नींद आ रही है तो जोर से बोली हरी हरी, पीछे बहुत सारे डिवोटीज देख रहे हैं, अगर कोई सोएगा तो वो आपको उठाएंगे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, जब चैतन्य महाप्रभु का ड्रामा हो रहा था, कौन सा ड्रामा था वो, सम देयर इज ड्रामा हरिदास ठाकुर वाज कमिंग इन बिटवीन, चंद्रशेखर चंद्रशेखर के घर में ड्रामा था, तो बीच बीच में हरिदास ठाकुर आते थे, ही वॉज अ पुलिस मैन, है ना, फेक मुस्टैच लगाए थे उन्होंने, और वो बीच में आके बोलते रहते थे, क्या बोलते थे, जागते रहो यार, ऐसे बीच में यहाँ भी बोलते रहना चाहिए, जागते रहो। मैं थोड़ी देर और बोलूँगा, उसके बाद फिर आप मिशन। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि एक पुत्र का जन्म हुआ और एक पुत्री का जन्म हुआ। वो पुत्र का पुत्र विश्वनाथ, पुत्र थे वृंदावन बिहारी कृष्ण और पुत्री थी योग माया। तो वसुदेव जी जो वासुदेव कृष्ण को लेकर गए, तो रास्ते में यमुना का जल बहुत बढ़ गया। यमुना माई की इच्छा थी कि मैं गोपाल के चरणों को स्पर्श करूं, पानी बहुत बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा। और फिर कुछ लोग बताते हैं कि भगवान के चरणों को स्पर्श करके फिर पानी कम हो गया, और कुछ लोग बताते हैं कि कृष्ण अपनी इच्छा से पानी में गिर गए, यमुना में गिर गए, और वसुदेव जी घबरा गए, कोई लो कोई लो कोई लो कोई कोई मेरे मेरे पुत्र को कोई ढूंढो, कहाँ पर है। तो मथुरा और वृंदावन के बीच में एक गाँव है आज भी, जिसका नाम है कोयलो, जहाँ पर वसुदेव जी के हाथ से कृष्ण गिर गए थे अपनी इच्छा से। कृष्ण को कौन उठा सकता है, जो अनंत ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, जिनके एक्सपांशन अनंत शेष, उनको कौन धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी कृष्ण अपनी इच्छा से ऐसी लीला करते हैं। अनंतनाग वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे भगवान की रक्षा करने के लिए, और जब वो वहां पर पहुंचे, नंद महाराज सोए हुए थे, यशोदा माता सोई हुई थी। यशोदा माता को पता नहीं था कि मेरे को पुत्र हुआ या पुत्री हुई। वासुदेव कृष्ण को उन्होंने वहां पर रखा, और वासुदेव कृष्ण और वृंदावन कृष्ण दोनों एक हो गए, और योग माया जो कि यशोदा माता की पुत्री थी, वो उसको लेकर वापस कंस के जेल की ओर निकल पड़े। अभी प्रश्न उठता है इस पर, वसुदेव जी को मालूम था कि मैं अगर ये लड़की को लेकर जाऊंगा तो कंस उसको मारेगा, है कि नहीं, इज इट नॉट। फिर उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो अपने पुत्र कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे थे कि इस बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने नंद महाराज की पुत्री को सेक्रीफाइस करना के लिए तैयार हो गए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर प्रोटेक्टिंग वंस ओन चाइल्ड एट द सेक्रीफाइस ऑफ अनदर्स। व्यक्ति कितने भी उदार हो, समझो कोई व्यक्ति का कोई पुत्र है, उससे वो बहुत प्रेम करता है, उसके मित्र का पुत्र है या भाई का पुत्र है, उससे भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दोनों प्रेम बराबर नहीं होंगे। व्यक्ति पहले अपने पुत्र की रक्षा करना चाहेगा, इसलिए वसुदेव जी ने पहले अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा की और योग माया को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है, वसुदेव जी के जो सब क्रिया थी वो भगवान की इच्छा से ही, योग माया से ही हो रहे थे, इसलिए भगवान का ये प्लान था, इसलिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। वसुदेव जी गए, देवकी के बिस्तर पर योग माया को सुला दिया, अपने बेड़ियों को खुद बांध दिया, और यशोदा माता कुछ पता नहीं था। नंद महाराज और वसुदेव दोनों दोस्त थे, और यशोदा और देवकी दोनों भी बहुत बहुत प्रेम से एक साथ एक दूसरे को जानते थे। ऐसे बताया जाता है कि देवकी और यशोदा, अगर आप देखें तो उनके पिता के पिता के पिता कॉमन थे, यानी एक ही वंश से आ रहे थे, तो इसलिए उनका आपस में बहुत प्रेम था। देवकी जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, इसलिए उनके प्रेम में ऐश्वर्य की भावना थी, लेकिन यशोदा शुरू से जानते थे कि कृष्ण भगवान, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, इसलिए जब कृष्ण कोई लीला करते थे, जब पूतना का वध हुआ या तृणावर्त भगवान को ऊपर ले गया और भगवान ने उनको इतना टाइट पकड़ लिया था, बहुत भारी हो गए, ऊपर जाने के बाद भारी हो गए, पहले एकदम हल्के थे फेदर की तरह, और ऊपर जाकर पर्वत की तरह बन गए। कृष्ण बहुत, क्या बोलते हैं उसको, चालू, बहुत स्मार्ट, वेरी एक्सपर्ट, पहले ऊपर ले गए, और जब कृष्ण ने इतना टाइट पकड़ा, अंत में असुर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो सब बोलने लगे, ओ देखो भगवान नारायण ने हमारे बालक कृष्ण की रक्षा कर दी, भगवान नारायण ने कृष्ण की रक्षा की, इंटर भगवान प्रोटेक्शन है ये। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजवासी कभी विश्वास नहीं करते थे, जब कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करते कृष्ण, तो बोलते शायद कृष्ण कोई देवता हैं, कृष्ण शायद कोई एक साधारण देवता है. सो दिस इज द नेचर ऑफ लव, एग्जॉल्टेड लव. केवल भक्ति और ज्ञानमय भक्ति, पहले ज्ञान है, फिर ज्ञानमय भक्ति है, और फिर केवल भक्ति है. ज्ञान यानी ये जानना कि कृष्ण भगवान है, और ज्ञानमय भक्ति यानी कृष्ण भगवान है और मैं जानता हूँ और भक्ति करना, और उससे ऊपर है केवल भक्ति. केवल भक्ति में ये पता ही नहीं होता कि कृष्ण भगवान है. भगवान की कृपा से भगवान उनकी दृष्टि को ढक देते हैं, जिसको पता नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है. इसके बाद जब वसुदेव जी लौट कर आए, कंस को तुरंत समाचार, बच्चे की रोने की आवाज आई, सब गेट के ऊपर उठ गए, और कंस दौड़ते हुए आया, मेरा काल आ गया. बहुत डर गया था वो, और डर के मारे और क्रोध के साथ देवकी के पास पहुंचे. देवकी ने बहुत मीठे शब्द में बताया कि हे मेरे भाई, ये तो एक लड़की है, ये तुम्हें नहीं मारने वाली है. मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि ये लड़की तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी, इसलिए तुम इसकी हत्या मत करो. तुम्हारी मृत्यु एक लड़के से होनी है, लड़की से नहीं. ये सब तुम्हारे असुरी दोस्तों ने तुम्हें गलत सलाह दी है. लेकिन कंस देवकी की बात सुनने को तैयार नहीं था, और बड़े क्रूरता के साथ एक शिला के ऊपर उसने योगमाया को फेंकने का प्रयास किया. लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रयास किया, योगमाया उनके हाथ से खिसक कर ऊपर आकाश में चली गई, और उसने बहुत सुंदर अष्टभुज रूप धारण किया, जिसमें कि एक में धनुष, बाण और बहुत सारे अस्त्र थे. सिद्ध, चारण और गंधर्व सब फूलों की बरसात करने लगे और बोलने लगे, जय जय. और योगमाया ने कंस से कहा, यू रास्कल कंस, हे बदमाश कंस, पता नहीं इंग्लिश में बोला या संस्कृत में बोला, हाउ कैन यू किल मी, द चाइल्ड हु विल किल यू इज ऑलरेडी बॉर्न बिफोर मी समवेयर एल्स विद इन द वर्ल्ड, डोंट बी सो क्रूएल टू योर पुअर सिस्टर. जो आपका काल है वो कहीं और जन्म ले चुका है, तुम मुझे नहीं मार सकते, और देवकी के प्रति क्रूरता मत करो. उस समय से योगमाया, भद्रकाली, विष्णुमयी, कृष्णा, चंडी, भद्रकाली, ये सब नामों के द्वारा योगमाया की पूजा होने लगी. कंस को बहुत डर लगा. कंस ने तुरंत वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कर दिया और माफी मांगी और बोले, मैंने बहुत अपराध किया है. करने के बाद मैंने अपने भतीजों को मारा, मुझे क्षमा कर दो. लेकिन मेरे को लगता है खाली मानव झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं. ये देवताओं ने बताया था कि आठवां गर्भ मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन अभी सत्य नहीं हुआ. फॉल्स प्रोपागेंडा इज फाउंड इन हायर प्लैनेट्स ऑल्सो, ऊंचे लोकों में भी अफवाहें फैलती हैं. इसलिए मैंने बहुत अपराध किया है, तुम तो बहुत बड़े महात्मा हो, लेकिन तुम ये जान लो, तुमको अपने पुत्रों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ विधाता की इच्छा से होता है. कंस उवाच, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय सुप्रीम पावर, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू सरेंडर टू दैट पावर, बट इट इज हैपनिंग बाय हिज पावर. एवरीवन इज अंडर कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पावर. वो सुप्रीम पावर है सबको एकत्रित करता है, जैसे नदी के किनारे तिनके एकत्र होते हैं, सबको अलग अलग कर देता है. इसलिए दुख करने की कोई बात नहीं है. इस शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, शरीर की मृत्यु में भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती. देही नोस्मि यथा देही, ये कंस गीता है, एक भगवत गीता है, कंस गीता. इसलिए हे देवकी, तू मेरे अपराध को माफ़ कर दो. ये मेरे सब कुछ अपने पूर्व जन्मों का कर्म सबको भुगतना पड़ता है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है, और मेरा दोष है भी तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो. उसकी आंखों से आंसू आने लगे. इमेजिन, कंस रो रहा हो, अनबिलीवेबल नहीं? कंस की आंखों से आंसू आने लगे. तब देवकी शांत हो गई, और वसुदेव जी को भी सब, वसुदेव जी कंस को कहने लगे कि हे मेरे ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, जो अपने पत्नी के भाई, साला, यस, कंस के लिए अप्रोप्रिएट है शब्द नहीं. हे मेरे साले साले. ये वैसे भी कैरेक्टर से भी साले और नाम से भी साले. आपका आपका जो जो भी ये विचार है वो सत्य है. और फिर दोनों में बहुत अच्छी बातचीत होने लगी, उन्होंने जेल से मुक्त कर दिया. लेकिन नेक्स्ट डे कंस ने अपने काउंसलर्स को बुलाया, कंस काउंसलर मीटिंग, है ना, का महीने में एक बार मीटिंग होता था और आपस में चर्चा करने लगे। और कंस के काउंसलर बोले, कंस तुम क्यों घबरा रहे हो, अपनी शक्ति को भूल गए, तुम बहुत शक्तिशाली हो, ये देवता जो है इनसे डरो मत, हम ऐसा करते हैं, जरूर तुम्हारे मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं जन्म लिया ही है, इसलिए पिछले 10 दिन में जितने बच्चों का जन्म हुआ है हम उन सबको मार डालेंगे, हम यह योजना को तुरंत पालन करेंगे, अगर हम इस हम ऐसा करते हैं तो किसी देवता की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ विरोध करें। वैसे देवता तो आपसे इतना डरते हैं, आपके शक्ति के सामने कौन देवता टिक सकता है, वो आपके सामने आने में भी डरते हैं। हमारा अनुभव है कि जब भी तुमने लड़ाई की है तो देवता तो लड़ ही नहीं सके, और जो लड़े वो पराजित हो गए, अपनी पगड़ी को खोल के अपने सिर को आपके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि हम आपकी शरण में आए। हमें पता है कि विष्णु भगवान हमेशा देवताओं की मदद करते हैं, ब्रह्मा और शिव जी भी, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ तक विष्णु का सवाल है, विष्णु तो सब जीवों के हृदय में छिप गए हैं, इसलिए वो तो कुछ नहीं कर सकते। विष्णु तो गए, अब रिटायर्ड हो गए, वो हृदय में चले गए। और जहाँ तक शिव जी का सवाल है, हमने सुना है वो तो जंगल में चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो जंगल में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी तपस्या में लगे रहते हैं। और इंद्र आपके सामने घास के तिनके के समान भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, देवताओं से डरने की बात नहीं है, लेकिन उनको निग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, हमें उनको मारने का प्रयास करना चाहिए। और फिर असुर बताने लगे, जब कोई शरीर में बीमारी आती है, देखो असुरों का भी थिंकिंग कितना क्लियर है ना, क्लियर असुर कॉन्शियसनेस है ना, क्लियर एकदम क्लियर थिंकिंग वो बोलते हैं, जब कोई शरीर में बीमारी आ जाती है तो उसका अगर परवाह नहीं करो तो बीमारी बढ़ जाती है, मेडिकल नॉलेज भी था उनको, ये बीमारी को दूर कर। ऐसे ही इंद्रियों को अगर वश में नहीं किया जाए तो बाद में बहुत तकलीफ होती है, असुर बोल रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे देवताओं का ख्याल रखना चाहिए, देवता बीमारी की तरह, इसके पहले कि बीमारी बढ़ जाए हमें उन देवताओं को समूल नाश कर देना चाहिए। और हम जानते हैं कि सारे देवताओं की जड़ है विष्णु विष्णु, इसलिए हमें सब यज्ञों को बंद कर देना चाहिए, जो भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनकी हत्या कर दो, गायों को मार डालो, और ऐसा करने से ब्राह्मणों की शक्ति कम हो जाएगी। ब्राह्मणों को मारना ये विष्णु को मारने के बराबर है। ये सुनकर कंस, ये देखो एसोसिएशन का प्रभाव क्या होता है, कंस पहले यह सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, लेकिन उसके इतने अच्छे मित्र थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव का लक्षण, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु सेस असत संग त्याग वैष्णव आचार, फर्स्ट थिंग इज वैष्णव, वैष्णव बनने के लिए असत संग त्याग। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब भक्ति की भावना बढ़ती है, अगर हम असुरों के संग में जाते हैं तो फिर से भावना कम हो जाती है। ऑफकोर्स आप में से कई लोग जो बाहर दुनिया में जाते हैं तो हमें रहना पड़ता है संसारी लोगों से, लेकिन ये रविवार के कार्यक्रम या जन्माष्टमी रामनवमी गौर पूर्णिमा और ये भी जो मीटिंग्स होते हैं उसके द्वारा हम अपने आप को फिर से अच्छी चेतना में रख सकते हैं। नहीं तो असत संग का प्रभाव ये है कि बड़े से बड़ा भक्त भी उसका भी पतन हो जाता है। और अगर आपको बाहर जाना भी पड़े अपने साथ एक सुरक्षा का साधन रखो, और वो सेफ्टी है हरि नाम। जैसे लड़ाई में अगर आप लड़ने जाते हो तो अस्त्र शस्त्र साथ में रखने चाहिए, अगर अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप घायल हो जाओगे, ऐसे हमारा अस्त्र है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद कंस कई असुरों को भेजना शुरू करते हैं, और उसमें से पहले होते हैं पुतना, पुतना देवी। कृष्ण लीला में और राम लीला में दोनों में पहला असुर जो है वो एक स्त्री होती है, विशेष कृपा है भगवान की। पुतना एक राक्षसी का रूप धारण करती है, वो एक खेचरी नाम के, खेचरी खेचरी का मतलब होते हैं कुछ राक्षसी या डायन जो हवा में उड़ सकते हैं, इसे वो लकड़ी पेड़ की लकड़ी पे बैठते हैं और लकड़ी के साथ उड़ने लग जाते हैं, उनको कोई फ्लाइट की भी जरूरत नहीं, उड़ते हुए आ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ पे हरी नाम होता है वहाँ पर नहीं आते, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं इनडायरेक्टली बोल रहे, अगर हरि नाम नहीं होगा तो आएंगे या इसलिए हर समय हरि नाम लेना चाहिए. पूतना शी वॉज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ किलिंग चिल्ड्रन. प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे कुछ हैं स्त्रियाँ, यानी अफगानिस्तान साइड में उस तरफ में ऐसे कई स्त्रियाँ हैं जिनको एक कला मालूम है, खेचरी बोलते हैं इसको. तो नंद महाराज वसुदेव जी से मिलने गए टैक्स भरने के लिए, और उस समय वसुदेव जी ने कहा नंद तुम जल्दी वापस जाओ, मेरे को लग रहा है कि ब्रज में कोई खतरा है, तुम जल्दी से लौटो. तो नंद महाराज लौट रहे थे. वास्तव में भगवान कृष्ण को कोई डर नहीं होता, लेकिन फिर भी लीला के रूप में नंद महाराज को लगता है कि कृष्ण खतरे में. जो भक्त वात्सल्य रस में है वो सोचते हैं कृष्ण मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. भक्त तो सोचना चाहिए कि मेरे को अपनी सेवा करनी है, हालांकि कृष्ण सब करने वाले हैं, लेकिन भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये चीज. भगवान कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बोलते अर्जुन मैं सबको मार रहा हूं युद्ध में, आप पीछे रथ के पीछे जाके सो जाओ. नहीं, भगवान बोलते नहीं तुमको युद्ध करना है. जैसे आप सबको भी ये मंदिर निर्माण की सेवा है और जन्माष्टमी के कार्यक्रम की सेवा है, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन हमें सेवा करनी है अपने शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन. हमारा एकमात्र उद्देश्य है लाइफ में सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना. उसका प्रमुख साधन है हर समय गाना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. पूतना ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए, और उसने ब्रज में प्रवेश किया, और ब्रजवासी सब सोचने लगे लक्ष्मी देवी आ गई. सबको लगा लक्ष्मी देवी आ गई, पता नहीं था डायन देवी है ये लक्ष्मी देवी आ गई, इतनी सुंदर थी. और नंद महाराज के घर में गए और देखा कृष्ण लेटे हुए हैं. अरे यशोदा ने भी कुछ सोचा नहीं, उसको जाने दिया अंदर. और जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा, उसने सोचने लगे दिस चाइल्ड इज सो पावरफुल दैट ही कैन डिस्ट्रॉय द होल यूनिवर्स इमीजिएटली. सोचने लगे ये बालक बहुत शक्तिशाली है, ये बालक पूरे उसको अंदर से, उसको अपने अंदर से ऐसे लगा. एक इसे कई बार परमात्मा सिग्निफाई करते हैं इसको. प्रभुपाद जी बोलते हैं पूतनास अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट. द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीबडीज हार्ट एंड ही गिव्स नॉलेज रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस. भगवान सबके हृदय में है और वही किसी को स्मरण कराते हैं, वही किसी को याद दिलाते हैं, वही किसी को भुलाते हैं. पूतना को पता था कि ये बालक को मैं देख रही हूं ये स्वयं भगवान है. छोटे बालक के रूप में है लेकिन सर्वशक्तिशाली. कई बार लोग बोलते हैं मैं भगवान हूं आप भगवान हैं, या मैं तो भगवान हूं आप भगवान बन जाओगे, प्रैक्टिस करो, ये कोर्स अटेंड करो, 6-day कोर्स, या उनका 6 day नहीं 1 month में आप भगवान बन जाओगे, पैसे पहले दे देना, बाद में बनोगे कि नहीं पता नहीं. लेकिन पूतना के वध के हम देखते हैं कि कृष्ण छोटे बालक के रूप में होते हैं तो भी वो कृष्ण उसका वध कर देते हैं. गॉड नेवर बिकम्स गॉड. भगवान कभी भगवान बनते नहीं हैं, गॉड इज ऑलवेज गॉड. तो पूतना को मन से ऐसे इशारा मिला कि ये भगवान है. श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण जन्म से ही भगवान है, ऐसे नहीं कि योगाभ्यास के द्वारा भगवान बन गए. भगवान कभी भगवान बन नहीं सकते, भगवान शाश्वत सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. फिर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी. इसका कारण बताया गया है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे ये पूतना ये राक्षसी, इसने कई मेरे ब्रजवासियों बच्चों की हत्या की है, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता. ऐसा सोच के उसने आंखों को बंद कर दिया. ये अपवित्र व्यक्ति होता है उसको देखना भी अच्छा नहीं होता. शास्त्रों में कहा गया जो नास्तिक है उसको जो विषयी है उसको देखते ही गंगा में स्नान करना चाहिए, दौड़ना चाहिए. उसको ये रूल हम हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो आपको हर समय गंगा में ही रहना पड़ेगा आजकल. टू बी समझ इन गंगा ऑलवेज है ना. बट यू कैन डू वन थिंग, वेन एवर यू सी अ नॉन डिवोटी जस्ट चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम. क्योंकि हरि नाम लेना गंगा यमुना कावेरी कृष्णा नर्मदा सरस्वती गोमती सब नदियों में स्नान करने से ज़्यादा हरि नाम लेना, सब तीर्थों में भ्रमण करने से ज़्यादा अच्छा है हरि नाम लेना। तो पूतना ने पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद की, एक कारण। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि कृष्ण सोच रहे थे कि पूतना को मालूम तो पड़ गया है दिस चाइल्ड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये चाइल्ड विशेष है, तो पूतना डर जाएगी। पूतना नहीं डरे इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, ये सेकेंड कारण है। और तीसरा कारण क्या है? कृष्ण का वचन है गीता में, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं असुरों को मारने के लिए आता हूँ, तो मुझे इसको मारना तो होगा, लेकिन एक स्त्री है, वैदिक रूल्स के अनुसार स्त्री को मारना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, स्त्री ब्राह्मण या बच्चे को। और कृष्ण सोच रहे थे कि स्त्री है इसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये राक्षसी इसको नहीं मारूंगा तो और बच्चों की हत्या करेगी, फिर मुझे मारना ही है इसलिए मैं आंखें बंद करके मारता हूं। एक और इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण क्लोज हिज आईज बिकॉज ही टुक पूतना टू बी हिज नर्स। पूतना केम टू कृष्ण टू ऑफर हर मिल्क, कृष्ण ने सोचा ये मेरी धाई है, धात्री नर्स है, और कृष्ण उनको माता की तरह ट्रीट कर रहे थे। जब कृष्ण पूतना की गोद में थे यशोदा और रोहिणी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बहुत सुंदर है, उनको लगा नहीं, पूतना की स्थिति ऐसी ही थी जैसे एक तलवार को सुंदर म्यान में रखा जाए, जैसे केस बहुत सुंदर है लेकिन अंदर तलवार जो है वो सुंदर उतनी नहीं है, ऐसे ही ऐसे जब भी कोई माया का प्रलोभन आए, माया का टेम्पटेशन आए, तो मन में एक कहानी को याद करना चाहिए, पूतना 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 दिखने में सुंदर बहुत आकर्षक, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए आए, पूतना हमारे हृदय की कृष्ण भक्ति को नाश करने के लिए। जैसे हम पूतना जैसे आकर्षक चीज़ों को देखें तो कृष्ण को पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूतना ने अपने स्तनों में भयंकर विष लगाया हुआ था, वो सोच रही थी कृष्ण अपने अपने होठों से मेरा दूध पीने जाएंगे और साथ में जहर पी जाएंगे, और कृष्ण ने उनके दूध लिया लेकिन साथ साथ उसके प्राण भी खींचने लगे। कृष्ण इतने दयालु थे, उसकी सेवा को भी स्वीकार कर रहे थे, और वो पुकारने लगे, बालक छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जोर से पुकार रहे थे। कृष्ण का एक गुण है, जब वो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। आपको भी कृष्ण ने पकड़ लिया, अभी एक बार आप इस्कॉन टेम्पल में आ गए और एक बार प्रसाद खा लिया, गए काम से। ना इवन इफ यू वॉन्ट टू लीव कृष्णा, कृष्णा विल नॉट लेट यू गो, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। पूतना चिल्लाने लगी, वो घर से बाहर भाग गई क्योंकि उसने अपना असली रूप धारण किया, 8 मील लंबा, 12 किलोमीटर यहां से लेकर स्वारगेट तक, ने इमेजिन इतनी लंबी माता जी कोई देखे, जन्माष्टमी में अगर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं स्वागत कक्ष के लोग देखते रह जाएंगे। पूतना इतना विशाल रूप, और कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे थे, और कृष्ण उनके प्राणों को खींच लिया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, श्री कृष्ण भगवान की। अगर आप पूतना के साइड में तो धीरे से जय बोलो, अगर आप कृष्ण के साइड में तो जोर से बोलो, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, शी फेल डाउन जस्ट लाइक वृत्रासुर फेल डाउन हर्ट बाय अ थंडर बोल्ट ऑफ इंद्र, इंद्र के वज्र से। अब उसकी सुंदरता का वर्णन देखिए, उसके दांत ऐसे लग रहे थे ऐसे प्लाउज हो, जो हल के लिए क्या बोलते हैं उसका, नागर या प्लाउज। उसके नॉस्ट्रियल गुफा के समान, है ना, जैसे जगह नहीं हो अंदर जाके कोई पढ़ाई करके बाहर आ सकते हैं ना, इधर इमेजिन 12 मील लंबी है तो इसका नाक भी कम से कम यू नो कितना होगा, 100-200 फीट तो होगा ही, यू नो अभी छोटी छोटी हम लोग कुटिया में पढ़ने जाते हैं, ये एकदम गुफा है, कोई पता ही नहीं चलेगा ये मरने के बाद। और फिर उसके जो इसका वर्णन किया गया, उसकी जो स्तन थे वो टेकरी की तरह, पर्वत की तरह लग रहे थे, 2 टेकरी। उसकी जांग जो है नदी के किनारे के समान, उसके 2 आंखों के सॉकेट अंधे कुएं के समान, और सब स्त्री पुरुष सब आकर्षित हो गए, सब घबरा गए आकर्षित नहीं सर। और फिर गोपियों ने देखा, दौड़ कर गए, कृष्ण कृष्ण, वो दौड़ते हुए गए और कृष्ण को पूतना के गोद से लेकर गए और उसको अपना दूध पिलाने लगे। और एक गाय की पूंछ लेकर, जो एक एक मंगलकारी माना जाता है, एक काऊ की टेल लेकर बच्चे के ऊपर अगर किया जाए तो सब इनऑस्पिशियसनेस दूर हो जाते हैं। और उसको गोमूत्र से स्नान कराया, उसको फिर जो गाय के, जब गाय चलती है तो उसके क्या बोलते हैं, उसके उसके खुरों से धूल निकलती है, वो धूल से उसको स्नान कराया गया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि गो रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। कृष्ण स्वयं अभिषेक करते हैं गोमूत्र से, गोबर से, इसे पता चलता है गाय कितना महत्वपूर्ण जानवर है। और गो रक्षा जो है वह समाज में प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यू कैन नो हाउ एडवांस सिविलाइजेशन इज बाय हाउ मच काउ प्रोटेक्शन इज एम्फोसाइज। फिर गोपियां कृष्ण को लेकर आए और बोलने लगे, भगवान अज तुम्हारे पैरों की रक्षा करें, भगवान मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें, भगवान यज्ञ तुम्हारे जांघों की रक्षा करें, भगवान अच्युत तुम्हारी कमर की रक्षा करें, भगवान सूर्य तुम्हारे गर्दन की रक्षा करें, और भगवान विष्णु तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करें, भगवान उरुक्रम तुम्हारे मुख के, भगवान ईश्वर, इस तरह से अनेक अनेक नामों से वो भगवान की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आप अगर जाओगे अभी भी नंदगांव में तो एक डीटी है नरसिंह भगवान की, आपने देखा है नरसिंह भगवान की डीटी नंदगांव में, भगवान की रक्षा के लिए नंद महाराज ने एक डीटी इंस्टॉल की नरसिंह भगवान की, क्योंकि वात्सल्य रस में उनको ऐसा लग रहा था। फिर सब अनेक अनेक मंत्र बोल रहे थे कृष्ण की रक्षा के लिए। और श्रीमद् भागवत में बताया गया एक सुंदर श्लोक, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, बकी बकासुर की बहन, ये ट्रांसेंडेंटल फैमिली था, बकासुर अघासुर और पूतना, मिस्टर बकासुर, मिस्टर अघासुर और मिसिस पूतना। तो बकी जो बकासुर की बहन है वो कृष्ण को जहर देने आई, लेकिन कृष्ण ने उसके जहर के साथ उसके प्राण लिए, उसको माता की गति दी। शी वेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन चली गई। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो उनको मारने के लिए आए उसको माता की गति दी। फिर जो व्यक्ति कृष्ण को दूध प्रेम से दे रहे हैं, कोई बिना जहर के, मिश्री के साथ, स्वीट के साथ, तो कृष्ण कितने प्रसन्न है। हु मोर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सरेंडर देन कृष्ण, कृष्ण से बढ़कर और कौन व्यक्ति है जिसकी शरण में जाना चाहिए। कम वा दयालु शरणम व्रजेम, वी शुड जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, कृष्ण की शरण में आओ। कैसे? उनका नाम लेकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज स्पीक लाउडर, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नंद महाराज सोच रहे थे, वसुदेव जी ने मुझे वार्निंग दी थी, आपको याद है नंद महाराज वसुदेव से मिलने गए थे, उन्होंने वार्निंग दी थी, ये सत्य सिद्ध हुआ। और अब समय आया पूतना का अंतिम संस्कार का, उसको कैसे लेके जाएंगे, 12 मील लंबा डेड बॉडी है ना, इसके लिए व्यक्ति को कितना होगा। तो उन्होंने एक योजना अपनाई, उन्होंने एक्सिस लेके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, दिव्य शरीर के। दिव्य क्यों? क्योंकि जब उसको जलाया गया तो उसमें से सुगंध आने लगी, क्योंकि पूतना को भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ। सम और अदर इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण यू बिकम प्यूरिफाइड, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी तरीके से अगर आप कृष्ण के संपर्क में आते हो तो आप शुद्ध हो जाते। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वान्वस्तान गतोपी वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, इंटरनली और एक्सटर्नली आप प्यूरिफाई जाते हो कृष्ण के कॉन्टैक्ट आने पर। सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, ही गिव्स अ ब्लेसिंग टू ऑल पर्सन्स हु हियर द नरेशन ऑफ द किलिंग ऑफ पूतना बाय कृष्ण, कृष्ण के द्वारा पूतना का वध की कथा जो भी व्यक्ति सुनते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, स्पेशली आज के दिन, दे विल श्योरली अटेन द मर्सी ऑफ गोविंद, उनका भगवान गोविंद की कृपा मिलेगी। श्रील प्रभुपाद जी कॉमेंट करते हैं कि जस्ट बाय हियरिंग वन बिकम्स प्यूरिफाइड, खाली सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, फिर शरीर छोड़ने के बाद गोलोक वृंदावन वापस पहुंच सकते हैं, इससे सब हृदय की अमंगल दूर हो जाते हैं। जब कृष्ण छोटे थोड़े बड़े हुए वो खेलने लगे, एक दिन का जन्मदिन था, यशोदा माता ने बहुत कुछ दान में दिया, जैसे मैंने बताया कि जिस दिन जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति दान देता है वैदिक प्रथा में, अभी कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन वैदिक प्रथा में जिसका बर्थडे है उसको गिफ्ट्स देने चाहिए। एक बार क्या हुआ, यशोदा माता स्नान करने के बाद कृष्ण को गोद में लेकर अपना दूध पिला रहे थे, और बच्चा जब दूध पिए अच्छी तरीके से माता को बहुत संतुष्टि होती है कि मेरा बालक बहुत अच्छा है, और वो बालक कृष्ण को उन्होंने कुछ समय के बाद एक जगह पर रखा था। सॉरी, ये मैं दूसरी कहानी में कन्फ्यूज हो गया, तृणावर्त की थी, लेकिन उससे पहले शक्टासुर की कहानी भूल गया। कृष्ण को दूध नहीं पिलाया था तो कृष्ण भूखे थे, रोने लगे और इतने जोर से रो रहे थे, लेकिन यशोदा माता को उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। तो कृष्ण ने हल्के से इस पैर से एक छकड़े को स्पर्श किया, हैंड कार्ट को, जैसे कृष्ण के कोमल चरण कमल, जो कमल के पंखुड़ी से भी कोमल है, इतने कोमल चरण जैसे स्पर्श किया, सारे बर्तन ब्रास के पूरे गिर पड़े, पूरा पहिया टुकड़े टुकड़े हो गया, सब स्पोक्स, सब एक्सल, सब अलग हो गया। कृष्ण के चरण कमल जस्ट टच करते ही आनंद महाराज सब आए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? और छोटे बच्चों ने कहा, हमने देखा तुम्हारे गोपाल ने किया। आनंद महाराज बोले, बच्चों की बात क्या सुनना, ये बच्चों की बात पे कोई भरोसा नहीं कैसे। बताया गया कि इस छकड़े के अंदर एक असुर था, इसका नाम था शक्टासुर। तो कृष्ण ने अपने नन्हे से पैरों से, एक्चुअली वो शक्टासुर वो भूत योनि में था, उसका शरीर ही नहीं था, सब प्रकार के असुर है, एक 12 मील लंबा असुर और एक अदृश्य असुर, और वो कृष्ण के स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो भी वृंदावन लीला में जो असुर आए हैं वो सब हमारे हृदय के कोई ना कोई अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, दे रिप्रेजेंट सम डीमंस इन आवर हार्ट, अनर्थस। तो कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण जब प्रकट होते हैं हृदय में तो सारे अनर्थ दूर होते हैं, और गुरु की सहायता, गुरु की कृपा और हरि नाम से, जैसे देनाकासुर है, देनाकासुर का वध किया था बलराम जी ने, ये सारे असुर अंत हो जाते हैं जब हम गुरु और वैष्णव की आज्ञा पालन करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं और प्रेम से, तन्मयता से, इंटेंसली, बिना अपराध के पुकारते हैं, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब ये डिस्कशन हो रहा था, यशोदा माता ने कृष्ण को अपने गोद में लिया और अचानक कृष्ण बहुत भारी हो गए। यशोदा माता ने उनको उठाकर नीचे रख दिया और घर के काम में लग गए। कृष्ण क्यों भारी हो गए? क्योंकि कृष्ण को मालूम था अभी एक और असुर आ रहा है, इसका नाम है तृणावर्त। कृष्ण सोच रहे थे कि यशोदा माता और सबको तकलीफ नहीं हो, इसीलिए वो अकेले उसको हैंडल करना चाहते थे, इसलिए यशोदा माता ने उनको नीचे रख दिया, अपने घर के कामों में लग गए। और कंस का एक सेवक जिसका नाम था तृणावर्त, एक तूफान के रूप में आया, क्या बोलते उसको, चक्रीवादल के रूप में, हरिकेन तूफान के रूप में, और बालक कृष्ण को उठाकर ऊपर चला गया, और सब जगह पर इतनी धूल मच गई थी कि किसी को पता नहीं चल रहा था कौन दूसरा व्यक्ति कहाँ पर है। यशोदा माता ढूंढ रही थी, कृष्णा गोपाल, कृष्णा कृष्णा कहाँ पर है, कृष्णा गोपाल, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जैसे गाय अपने बछड़े के विरह में रोने लगती है, यशोदा माता बिगेन टू क्राई, यशोदा माता रोने लगी। तृणावर्त धीरे 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 कृष्ण को अपने कंधे पे ले ऊपर चला गया, लेकिन फिर कृष्ण बहुत भारी हो गए। ये कहानी मैंने पहले बताई, जैसे कृष्ण इतने भारी हो गए और साथ में गर्दन को पकड़ के रखा प्रेम से, हरि बोल, प्रेम से गले मिल गए। नहीं, अलग अलग तरीके हैं कृष्ण से मिलने के, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान इतना टाइट पकड़ लिया, तृणावर्त ऐसा लगा कि कोई पर्वत को ले जा रहे, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उदाहरण नहीं कर पाया, उसकी आंखें अपने सॉकेट से बाहर निकलने लगे और वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण भगवान की। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, द डीमन फेल डाउन लाइक त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का नाम सुना आपने? त्रिपुरारी किसका नाम है? शिवजी का। शिवजी ने एक तीर से एक विशाल राक्षस जिसका नाम था त्रिपुरारी, उसका अंत किया था त्रिपुरासुर। त्रिपुरारी शिवजी का नाम है। त्रिपुर असुर को मारने वाले त्रिपुरारी, इस तरह से तृणावर्त का वध हो गया, उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। और गोपियां दौड़ते हुए आए और कृष्ण को गोद में उठा लिया और कृष्ण को अच्छे खाने के लिए भोजन दिया। और कोई कहने लगे, ये सत्य बात है, पापी लोग अपने पाप से मर जाते हैं और बच्चों की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। जरूर पूर्व जन्मों में हमने पेड़ लगाए होंगे, कुएं खोदे होंगे, दान दिया होगा, उसके फल से हमारे बालक की रक्षा हो रही है। पता नहीं कितने सुकृति कार्य हो रहे हैं, कितने सारे असुर आ रहे हैं, लेकिन बालक कृष्ण को कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। और फिर यशोदा माता फिर से कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगे। इस बार जब दूध पिलाते पिलाते उसको अपने हाथ से पैट कर रहे थे और एक बार देखने के लिए कृष्ण के मुंह पे अपने अंगुली से स्पर्श किया। और जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, उसके अंदर यशोदा माता ने पूरे ब्रह्मांड को देखा। सारे सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पूरा भारत, पूरा पूना, इस्कॉन टेम्पल, फ्यूचर टेम्पल, सब सब कुछ देखा। और ये देखकर यशोदा माता सोचने लगी, हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत, क्या ये मेरा बालक है, क्या ये भगवान है, ये जरूर भगवान है। और फिर भगवान ने अपनी योग माया से ढक दिया, सुर को भूल गए। दो बार कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, एक बार तो यशोदा माता ने अपने अंगुली से उनके मुंह को खोला और दूसरी बार जब ही अर्जुन को नहीं, यशोदा माता को दो बार दिखाया। ये मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी? कृष्ण के पार्टी में है तो नहीं खाई थी, और बलराम की पार्टी में है तो खाई थी। आप क्या बोलते हैं, खाई थी कि नहीं खाई थी? कितने लोग लगते हैं खाई थी कृष्ण, कितने लगते हैं नहीं खाई थी? कितने लोगों को कुछ लगता ही नहीं? दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग। हरी हरी, ये कम से कम एक वोट करना है। कितने लोगों को लगता है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, और कितने को लगता है कृष्ण ने नहीं खाई थी? कृष्ण ने खाई भी थी और नहीं भी खाई थी। क्यों? क्योंकि अचिंत्य। कृष्ण बोल रहे हैं मैंने नहीं खाई थी, कृष्ण झूठ नहीं बोलते, कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण बोलते हैं कि हम अभी चांद पे हैं तो हम चांद पे हैं। कृष्ण अगर बोलते हैं कि आज रविवार है तो रविवार है, चाहे कैलेंडर कुछ भी बोले, वी डोंट केयर, वी केयर फॉर कृष्ण। और दूसरा है कि कृष्ण के मुंह में ऑलरेडी सारा, पूरी जगत है, सारी मिट्टी उन्होंने खाई है, इसलिए कृष्ण ने खाई भी है। कुछ नहीं मालूम हो तो बोलना चाहिए अचिंत्य। अचिंत्य मतलब यस और नो दोनों हो जाते हैं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। हरी हरी। इसके बाद वसुदेव जी ने किसको बुलाया कृष्ण के नामकरण संस्कार के लिए? गर्ग मुनि। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जिसका नाम था गर्ग मुनि। प्रभुपाद मजाक में कई बार उसको गर्ग मोनी मणि, गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु, ये दोनों भाई थे। और ये दोनों प्रभुपाद के इस्कॉन में फुल टाइम सेवा के लिए आ गए, तो उनके माता पिता नाराज हो गए। जैसे आप सबको अनुभव होगा, जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, माता पिता बहुत प्रेम से आपको भेजते हैं, बहुत क्रोध होता है। उनके माता बहुत गुस्से में आए प्रभुपाद से मिलने के लिए। अब जैसे वो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद जी उनके बोलने से पहले ही प्रभुपाद जी ने बोलना शुरू कर दिया कि बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक। प्रभुपाद जी बोले कि देखो, मैं जो इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ भक्ति की, वो आपको देनी चाहिए थी। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को कृष्ण भक्ति खिलाना, क्या सिखाना, और हम आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको जो है हमें धन्यवाद कुछ देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनकी माता हाथ जोड़ के बोली, मैंने ऑलरेडी आपने दो पुत्र आपको दे दिए, और क्या दूं? तो प्रभुपाद जी बोले, ठीक है, थैंक यू। हम इसके बाद और कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद ने गर्ग मुनि प्रभु को बोला कि हमेशा अपनी माता को प्रणाम करना, उनके चरण छूना, सबके सामने बोले उनके चरण को छूना। वैदिक कल्चर में होता है ऐसे, लेकिन अमेरिका में कोई माता पिता के चरण छूता नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। एक बार तो गर्ग मुनि ब्रह्मानंद अपने माता से मिलने के लिए गए दरवाजे में, उन्होंने बेल बजाया और जैसे माता ने दरवाजा खोला, उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनकी माता बोला, अरे क्या हुआ, कुछ गिर गया, क्या ढूंढ रहे हो? देखो तो ये कल्चर है ही नहीं। उन्होंने गर्ग मुनि के समय कल्चर था, तो माता पिता जो है चाहते थे कि बच्चे का नामकरण संस्कार हो, उनको ब्लेसिंग्स मिले। तो गर्ग मुनि को उन्होंने अपने घर में स्वागत किया और कहा, आप जैसे साधु, आप जैसे वैष्णव जो घर में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि गृहस्थों का उद्धार करने के लिए। एक्सटर्नली लगता है कि वो भोजन के लिए आए हैं या प्रसाद के लिए आए हैं, लेकिन इंटरनली उनका कारण है लोगों का उद्धार करना। आनंद महाराज ने उनसे कहा कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो हे गर्ग मुनि। और फिर गर्ग मुनि ने बताया, मेरे आने का असली कारण है वसुदेव। वसुदेव जी ने मुझे भेजा है और बोला है कि आपके दो बालकों का नामकरण संस्कार किया जाए। अब ये बात सबको मालूम था कि बलराम जी जो हैं वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं ये सीक्रेट था, ये नंद को भी नहीं मालूम था। और गर्ग मुनि कहने लगे कि मैं नामकरण संस्कार करने के लिए आया हूं, लेकिन अगर मैं करूंगा तो ऐसा लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, गर्ग मुनि, एस्ट्रोलॉजी यानी हिंदी में क्या बोलते, ज्योतिष शास्त्र कुंडली से देखकर व्यक्ति बता सकता है कि ये बालक पूर्व जन्म में क्या था, इसका भविष्य क्या होगा। आप मत जानने की कोशिश करना, पता नहीं कैसे कैसे योनियां होंगे। लेकिन कृष्ण के केस में वो जानता था। गर्ग मुनि कहने लगे कि ये दोनों ही कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। वो कहने लगे कि ये तुम्हारे बालक हैं, ये बहुत विशेष हैं, मैं इनका नामकरण संस्कार करने को तैयार हूं, लेकिन सबके सामने नहीं। अगर मैं इनका नामकरण संस्कार धूमधाम के साथ करूंगा तो कंस को मालूम पड़ जाएगा और कंस समझ जाएगा कि यही है देवकी का आठवां गर्भ, यही है मेरा काल, और इसका मुझे अंत कर देना चाहिए। नंद महाराज बोले, ठीक है, हम बड़ा सेरेमनी नहीं करेंगे, हम एक छोटी सी प्रोग्राम करेंगे, कहां पर, गौशाला में, तुम गौशाला में करेंगे। और नंद महाराज ने स्वीकार किया ये प्रपोजल। तो नामकरण संस्कार के समय वो कहने लगे, ये जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है ये रोहिणी नंदन है, और ये जो है ये पूरे परिवार वालों को आनंद देने वाला होगा, इसीलिए इसका नाम होगा राम। राम मतलब आनंद देने वाले, और ये आध्यात्मिक बल देने वाला होगा, इसलिए इसको बलराम बोलेंगे, बल या बलदेव। और ये तुम्हारे वंश को और यदु के वंश को जोड़ेगा, ये वसुदेव जी यदु वंश में है और ये गोकुल का वंश नंद महाराज का वंश है, ये दोनों वंश को जोड़ेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, विल बी अट्रैक्टेड। तो तीन नाम रखे, बलराम, संकर्षण और बलदेव। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि पहले देवकी के गर्भ में थे, और ये बताया नहीं कि कृष्ण और बलराम दोनों पहले से भाई रहे हैं। और ये तुम्हारा दूसरा बालक है, ये छोटा बालक है, ये अलग अलग कलर में अलग अलग युगों में प्रकट हुआ है। इसके पहले वो सफेद रंग में आया था, और उसके बाद फिर लाल रंग में, और फिर उसके बाद पीले रंग में, और अब वो श्याम वर्ण में आया। क्योंकि ये पहले वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। कुछ लोग उनको कृष्ण बोलेंगे, लेकिन ये तुम्हारे बालक के अनंत नाम होंगे, अनंत क्रिया होंगे। कृष्ण, सब लोग बोलिए कृष्ण, हरि, वनमाली, गोविंदा, गोपाल, और क्या, यशोदानंदन, श्याम सुंदर, गिरिधारी, कुंज बिहारी, नंदनंदन, यशोदानंदन, और राधा रमण, गोकुलानंद, गोपीनाथ, ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेश तनय, वृंदावन चंद्र, और मदन मोहन, रास बिहारी, श्याम बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, बांके बिहारी, ये सब इसमें नहीं लिखा है लेकिन है ये ना। कृष्ण के अनंत नाम है, हमारी बुद्धि सीमित है। एक बार कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन बताइए, मुचुकुंद ने पूछा आपका नाम क्या है, भगवान बोले आप आकाश के तारे गिन सकते हो तो गिन लो, लेकिन मेरे नाम नहीं गिन सकते। कृष्ण इज अनंत, कृष्ण का एक नाम है अनंत, अनंत कृष्ण, कृष्ण इज अनंत। फिर गर्ग मुनि ने बताया ये जो तुम्हारा बालक है कृष्ण, ये तुम्हारा जो छोटा बालक है, पूर्व जन्मों में इसने कई बार साधुओं की रक्षा की असुरों से और चोरों से। ये बालक इतना शक्तिशाली है कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बालक का भक्त बनेगा उसको कोई भय नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान की। और जो भी तुम्हारे बालक का भक्त बनेगा उसको शत्रु आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे देवताओं की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं, ऐसे तुम्हारा बालक भक्तों की रक्षा करेगा। ये शक्ति में, सुंदरता में और बल में भगवान नारायण के समान बनेगा। वो ये नहीं बोलते कि भगवान नारायण इसी से आ रहे हैं, एक्चुअली नारायण रामादि मूर्ति शु कला नियमेन तिष्ठान, सारे अवतार कृष्ण से आ रहे हैं। मेरी सलाह ये है कि ये बालक को आप संभाल के रखिए बिना डिस्टर्बेंस के, जिससे कोई इसको तकलीफ नहीं दे। गर्ग मुनि ने इस तरह से नंद महाराज को बताया कि ये बालक स्वयं नारायण है, इनडायरेक्टली इंडिकेट किया, और फिर वो वापस घर लौट कर आ गए। थोड़े समय बाद कृष्ण बलराम चलने लगे घुटनों के बल। घर में जब बच्चा चलने लगता था कितना आनंद होता है माता पिता को, आज कृष्ण अगर बच्चे हैं तो फिर तो कहना ही क्या। जनरली जब बच्चा छोटा खेलने लगता है तो लोग बोलते हैं बाल कृष्ण कितना सुंदर है, होता नहीं है सुंदर, फिर भी टाइम पास के लिए बोलते हैं सुंदर है, लेकिन जब कृष्ण बालक के रूप में है इट्स रियली सुंदर है। दुनिया में कोई व्यक्ति का लड़का अंधा होता है तो नाम लगते हैं पद्मलोचन, यू नो, वो खाली नाम के लिए, लेकिन कृष्ण वास्तव में कृष्ण है। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक, सब ज्ञान, सब बल, सब सुंदरता, सब वैराग्य, सब यश, सब जिसमें एक व्यक्ति में पूर्ण मात्रा में हो उसको बोलते हैं कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तो कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे और कभी कभी वो घबरा भी जाते, कभी कभी किसी को देख के डर जाते तो दौड़कर अपने माता के वस्त्रों को पकड़ लेते, कभी कभी वृंदावन के मिट्टी में खेलने लगते, और कभी कभी यशोदा माता रोहिणी के गोद में जाकर उनका दूध पीने लगते। तो एक बार माता ने देखा कि बच्चों के दांत आ रहे हैं, माता पिता को बहुत खुशी होती है बच्चों के दांत, कई बार माता पिता को बच्चे को गोद में लेके ऐसे खिलाते हैं ऐसे। इस तरह यशोदा माता नंद महाराज बहुत खुश हुए। और कभी कभी कृष्ण बलराम किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते और बछड़ा दौड़ने लगता, और कृष्ण सोचते हैं मैं पूंछ छोड़नी नहीं चाहिए, पकड़ के रखते और पूरे मिट्टी से ओतप्रोत हो जाते। जब आप वृंदावन जाते हो या गोकुल जाते हो या मथुरा जाते हो या बरसाना, नंदग्राम, गोवर्धन, इन स्थानों में जानते हो तो जानना चाहिए कि वही मिट्टी है जिसमें कृष्ण बलराम राधा रानी गोपियाँ खेलते थे, जहाँ पर बड़े बड़े संतों ने तपस्या की है और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त की है। कृष्ण बलराम इतने चंचल हो गए कि उनकी रक्षा करना मुश्किल हो गया। कभी वो गायों से खेलते, कभी बंदरों से खेलते, और कभी कभी आग के पास जाते। फिर धीरे धीरे कृष्ण बलराम चलने लगे। जब कृष्ण चलने लगे तो सब बहुत खुश हो गए कि देखकर कि वो व्यक्ति जिसकी आज्ञा से पूरी विश्व चल रहा है वो अब चलना सीख रहे हैं। कृष्ण की आज्ञा से सब देवता चलते हैं, हम सब भी कृष्ण की आज्ञा से चल रहे हैं, हम सब भी कृष्ण की आज्ञा से बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण अब चलना सीख रहे हैं। इमेजिन, जैसे बच्चा पहले चलता है, आपको याद होगा आपकी बाल्य लीला, या आपने आपके बच्चों को कैसे बच्चा चल गिर जाता है फिर उठता है, फिर थोड़ा 10 फीट तक चलता है, इसे कृष्ण अपनी बाल्य लीला प्रकट कर रहे हैं। हाँ, एक दिन सब गोपियां मिलकर यशोदा माता को उलाना देने गए, कंप्लेंट करने गए, अरे यशोदा तुम्हारे कान्हा को समझा दो, ये घर में आते हैं और गायों के पास जाते हैं, हम लोग गाय का दूध निकालते हैं और बाद में फिर बछड़ों के लिए रखते हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम जी क्या करते हैं, दूध निकालने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देते हैं, अब बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और हम खाली बर्तन लेकर वापस जाते हैं। तुमने कृष्ण को समझाओ। और कई बार वो हमारे मक्खन को लेते हैं और खाते हैं और खाने के बंदरों को देखते हैं, फिर बच जाता है तो बोलते हैं तुम्हारा मक्खन बेकार है, बंदर भी नहीं खा रहे इसका, यूजलेस बटर है। और कभी कभी हम उनके घर में जाते, कभी हमारे घर में आते हैं और हम बोलते हैं कन्हाई, ए कन्हैया क्यों चुरा रहे हो, तो बोलते हैं हम कहाँ चुरा रहे हैं, हाँ क्या हमारे घर में कमी है कोई। कृष्ण गलत नहीं बोल रहे, ये पूरी दुनिया ही कृष्ण की संपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके कोई चीज़ उठाता है तो उसको क्या चोर बोला जाता है, ये वो चोर नहीं, पूरी दुनिया ही चोर है कृष्ण को छोड़कर, सब कुछ कृष्ण का ही है। जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति चुराता है तो उसको सजा मिलती है, जब कृष्ण चुराते हैं सब लोग बोलते हैं माखन चोर नंदलाला गोपाल कृष्ण की। जिस दुनिया में कोई लड़ाई से भाग जाता है तो उसको कायर कहा जाता है, उसको सजा दी जाती है, लेकिन जब कृष्ण भाग जाते हैं तो सब बोलते हैं रणछोड़ जी राय की। चलो जोर से जय बोलिए, रणछोड़ जी राय की, नंदलाला गोपाल कृष्ण की। एक बार तो क्या हुआ कि एक गोपी बोली, यशोदा तुम्हारा कृष्ण बहुत शिकायत करता है, बहुत बहुत शरारत करता है। यशोदा बोली तुम उसको पकड़ के तो ले आओ, तुम बोल रहे हो तो कि वो मक्खन चुरा रहे हैं लेकिन वो नहीं स्वीकार कर रहे। एक दिन एक गोपी ने, कृष्ण अंदर थे और दरवाजा बंद कर दिया, और फिर कृष्ण को पकड़कर हाथ पकड़कर लेकर आए, बोले मैया यशोदा, अरे यशोदा देखो देखो तुम्हारा काना पकड़ा गया अभी। यशोदा माता बाहर आई और देखा, यशोदा माता ने देख के बोला तुम किसको ले आए, और गोपी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर उसी गोपी का लड़का था, और गोपी बेचारी निराश हो गई। यशोदा माता बोलती क्यों तुम बेकार में अपने स्वयं का पुत्र मक्खन खा रहे, मेरे पुत्र का नाम ले रहे हो। यशोदा माता घर में अंदर चले गई और फिर देखा वो फिर से कृष्ण बन गए, और कृष्ण मुस्कुराकर बोले अगर फिर से पकड़ा ना तो अगली बार तुम्हारे पति का रूप धारण कर लूंगा। सब कहानी गोपाल चंपू में बताई गई है, जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहानियां लिखी। ये कृष्णा बुक मेन है, उसके अलावा विश्वंत ठाकुर, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और सब कुछ बनाया जाता है, इन्होंने अलग अलग आइटम्स बनाए हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण लीला इतनी मधुर है कि अगर आप सुनते रहोगे तो आपको भूख और प्यास भूल जाएगी। जैसे अभी हमको पता ही नहीं है क्या टाइम है, क्या समय है, वी बिकम एब्जॉर्ब्ड, हमें एब्जॉर्ब्ड रहना चाहिए कृष्ण कथा। एक बार तो कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे और मक्खन खा रहे थे और यशोदा माता आ गई। अब क्या बोलेंगे, रेड हैंडेड रंगे हाथ, मैया मैया आज तुमने नए मुझे आभूषण पहनाए, नए बैंगल्स पहनाए मैया, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, हाथ को ठंडा करने के लिए मैंने मटके मिला। और एक बार तो कृष्ण जब जा रहे थे मक्खन चुराने, रास्ते में उनको एक खंबा दिखाई पड़ा, ये खंबा नहीं बाम्बू लकड़ी का, सब ज्वेल्स के बने हुए थे, हीरे मणियों के, तो उसमें उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, रिफ्लेक्शन, अपने आप का रूप दिखाई पड़ा। वो लगा कोई दूसरा सखा है, वो बोले बताना मत मैं आपको भी दूंगा। थोड़े आगे जाने के बाद रास्ते में मैया यशोदा दिखी, जहाँ पर प्रभु जी खड़े हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद, और मैया को देखो, मैया मैया वहाँ देखो एक लड़का है मक्खन चुराने जा रहे हैं, देखो मैया मैया, मैंने उसको बोला मत चुराओ लेकिन वो जा रहे हैं। और कभी कभी हम अपने बर्तनों को ऊपर रखते हैं लेकिन कृष्ण और उनके मित्र एक के ऊपर एक चढ़कर बर्तन तोड़ देते हैं, और बर्तन बहुत ऊंचा हुआ नहीं जा सके तो एक लकड़ी लौकर उसको छेद कर देते हैं और सारा मक्खन फिर बड़े आनंद के साथ खाने लगते हैं। और अगर हम, यशोदा बोली ठीक है तुम अंधेरे में रख दो, नहीं नहीं हम अंधेरे में रखते हैं, लेकिन तुम्हारे काना के पास इतने सारे आभूषण हैं, इतने सारे ऑर्नामेंट्स हैं कि उसे इतना सारा प्रकाश आता है, जैसे प्रभा प्रभोतो जगदंड कोटि, इसके प्रकाश से जगदंड कोटि को प्रकाश मिलते ब्रह्म ज्योति, तो उस प्रकाश के कारण हम छुपा नहीं सकते, इसको पता चल जाता। तो मैया बोली ठीक है कल से मैं आभूषण नहीं पहनाऊंगी। गोपियां बोले नहीं 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 ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे बालक में पता नहीं कैसा तेज है, बिना आभूषण के भी बहुत तेज प्रकट करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मक्खन को वहीं और रखो जिसे कोई स्पर्श नहीं करे। गोपियां बोले हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम घर के ड्यूटीज में इतने व्यस्त रहते हैं और सब कृष्ण और सारे मित्र आते हैं, और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो जमीन पर आकर पेशाब करके चले जाते हैं। अभी इस दुनिया में हर बच्चा पेशाब करता है, इसको लिखा नहीं जाता भागवतम में, लेकिन कृष्ण ने एक बार पेशाब किया और सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की ये लीला भी उतनी ही मधुर है जितना कि रासलीला है या रणछोड़ जी की लीला है। हमें भेद नहीं करना चाहिए कि मेरे को खाली रासलीला पसंद है, वृंदावन लीला, द्वारका लीला पसंद नहीं है या कुरुक्षेत्र लीला पसंद नहीं है। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, और उनकी हर लीला जो है वो दिव्य है। अब देखो देखो ये कृष्ण कैसे खड़े हुए वहां पर, ऐसे खड़े हुए जैसे मानो एकदम मासूम बालक हो। यशोदा माता उनको डांटने गई और कृष्ण ने ऐसा चेहरा दिखाया, ऐसा चेहरा दिखाया, यशोदा माता कुछ बोल ही नहीं सकी, इतने भोले भाले। उस समय जब कृष्ण बलराम खेल रहे थे, एक दिन बलराम जी और सब मित्र मिलकर आए, बोले आज कृष्ण ने मिट्टी खाई, आज कृष्ण ने मिट्टी खाई। यशोदा माता बोली ठीक है, हम मैं कृष्ण को देखूंगी फिर बाद में बोलूंगी। कृष्ण को बुलाया, कान्हा गोपाल तुमने आज मिट्टी खाई? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब बोल रहे हैं, बलराम जी बोल रहे हैं, तुम्हारे मित्र बोल रहे हैं। नहीं मैया, ये आज जो है ना हमारे खेल में थोड़ा झगड़ा हो गया और मेरे पर क्रोधित हो गए, और ये सब बलराम जी के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, द बलराम कॉन्स्पिरेसी है ना। ये कॉन्स्पिरेसी सुनना चाहिए, इसे सुनने से हमारी सब कॉन्स्पिरेसी बंद हो जाती है, मटेरियल कॉन्स्पिरेसी। तो इन्होंने मेरे विरुद्ध शिकायत की है, ये सब मेरे विरुद्ध हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा मुंह खोल के देखिए। मैया बोली खोल के दिखाओ, और कृष्ण ने अपना मुंह खोला और उस मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, धरती आकाश तारे चंद्रमा सारे लोग चर अचर प्राणी सब दिखाई पड़े। और यही नहीं, उसने अपने आप को भी देखा, वहां उनके मुंह के अंदर देखा कि कृष्ण कृष्ण के मुंह के अंदर यशोदा है और यशोदा की गोद में कृष्ण है। वो समझ में आया, हम लोग जाग रहे हैं ना, हरी हरी। इमेजिन, यशोदा ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड को देखा, उसमें अपने आप को भी देखा, उसके गोद में कृष्ण थे, और अगर उसके मुंह में देखे तो उसके अंदर और ब्रह्मांड होगा, उसके अंदर और यशोदा, उसके अंदर और कृष्ण। इमेजिन, हम खाली थियोरेटिकली बोल रहे हैं, आपको ऐसा दृश्य दिखाया जाए जहाँ पे न्यूयॉर्क टोक्यो लंदन मुंबई पुणे दिल्ली मद्रास चेन्नई कलकत्ता जबलपुर कोल्हापुर सब एक मुंह में दिखाई पड़े तो आप डर जाओगे नहीं। से कोई व्यक्ति यहाँ आया शाम को प्रोग्राम में प्रसाद खाते समय दिखाई पड़े, वो भी छोटा बालक हो। यशोदा माता घबरा गई, हाँ एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, ये क्या है, ये मैं पागल तो नहीं हो गई, मैं मेंटली डिरेंज तो नहीं हो गई, यह कोई शक्ति तो नहीं है। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं उस भगवान को प्रणाम करती हूँ जो सब कारणों के कारण है, मैं उन कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, मैं उन गोपाल को प्रणाम करती हूँ, बालक श्री कृष्ण शरण मम। जब यशोदा ऐसा सोच रही थी, कृष्ण सोच रहे थे मुझे ये सब पूजा नहीं चाहिए, मुझे मक्खन लड्डू और मिश्री चाहिए, अगर यशोदा माता मेरा इतना आदर करेंगे तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, उनकी भक्ति में ऐश्वर्य आ जाएगा, मुझे ऐश्वर्य शीतल भक्ति चाहिए, वो डिवोशन जिसमें ऐश्वर्य की भावना नहीं है वैसी भक्ति चाहिए। यशोदा माता ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में ले लिया, कृष्ण ने अपने योग माया से इंटरनेट से मोहित कर दिया, और फिर वो कृष्ण को समझ गए कृष्ण मेरे पुत्र हैं। यशोदा माता ने बहुत साल तपस्या की होगी जिससे कि उसको इतना सुकृति फल मिले, नंद महाराज ने भी किए होंगे। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज ने कि वसुदेव और देवकी को कृष्ण की बाल लीला देखने को नहीं मिली, लेकिन नंद और यशोदा को देखने को मिली, तो क्या उन्होंने तपस्या की थी? सुखदेव महाराज से पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या तपस्या की थी? सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज को कि वसुओं में सर्वश्रेष्ठ थे द्रोण। द्रोण की पत्नी का नाम था धरा, और द्रोण और धरा को आज्ञा दी गई ब्रह्मा जी द्वारा, आप संतान उत्पत्ति करो। तो बोले, हे पिताजी, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ब्रह्मांड में जन्म मिले तुम्हें भगवान कृष्ण की बाल्य लीला देखने का अवसर मिले। इन लीलाओं को सुनने से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। स्पेशली आज के दिन सुनना, वो भी अगर जागते हुए सुने तो और भी अच्छे। जस्ट बाई हियरिंग दिस पास टाइम्स यू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अगले जन्म में तुम यशोदा बनोगे और नंद महाराज जो धरा है यशोदा बनेगी, और द्रोण जो है वो नंद महाराज बनेंगे। इस तरह से नंद महाराज और यशोदा माता ने भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत किया। लेकिन एक बार, अब सब मुझे आशीर्वाद दो, बोलो हरी हरी,
हरी, हरी।
आपके आशीर्वाद से मैं बोल सकता हूँ, बोलने में शक्ति लगती है, बहुत एनर्जी जाती है, स्पेशली निर्जल के दिन। तो आप आशीर्वाद दोगे तो मैं बोल सकता हूँ हरी,
हरी
हरी। एक बार यशोदा माता ने देखा कि सब घर के काम एक दासी कर रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं भगवान कृष्ण के लिए मक्खन बनाऊंगी। आपने देखा होगा, जैसे आजकल तो यहाँ नहीं दिखता दूध दही मक्खन होता ही नहीं है सर, लेकिन गांव में आप जाओ तो अभी भी स्त्रियां हैं जो मक्खन बनाते हैं दही को बिलोने के बाद में। यशोदा माता ऐसे कर रही थी, बहुत पसीना आ रहा था, और कृष्ण दौड़ते हुए बोले, माँ मेरे को भूख लगी है, और उन्होंने यशोदा माता का हाथ पकड़ लिया बताने के लिए, योर फर्स्ट बिजनेस इज टू गिव मी मिल्क, देन यू कैन चर्न बटर लेटर। आपका पहला बिजनेस है कि मुझे दूध देना। तो यशोदा माता ने कृष्ण को अपने गोद में लिया, अपने साड़ी से उनको ढक दिया और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगे, और कृष्ण की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। अचानक सामने स्टोव के ऊपर या चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था और वो दूध गिरने लगा। यशोदा माता सोच रही थी कि कृष्ण को दूध पिलाना भी मेरी सेवा है, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेवा है। कई बार डिवोटी को एक सेवा छोड़नी पड़ती है दूसरी सेवा के लिए। यशोदा माता ने कृष्ण को वहीं पर छोड़ा और वो तुरंत दौड़ते हुए गए स्टोव के पास में, और कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। छोटे बच्चे को अगर आप ध्यान नहीं दो तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, है कि नहीं? चाइल्ड वॉन्ट्स अटेंशन, उसको ध्यान चाहिए होता है। तो कृष्ण बहुत गुस्से हुए, अपने होठ को डांट से जैसे पीसने लगे, और गुस्से में आके उन्होंने एक पटा लिया, टांग जोर से मटकी को तोड़ दिया, और फिर उसमें से मक्खन खाने लगे, नकली आंसू बहने लगे और मित्रों को भी खिलाने लगे। इधर यशोदा माता लौट के आई, देखा कि बर्तन टूटा हुआ है और कृष्ण नहीं है, समझ गई कृष्ण की करतूत है। और इधर कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे थे, और कृष्ण खिला रहे थे और देख रहे थे कि माता पीछे। यशोदा माता धीरे धीरे आ रही थी, उसने देखा, जानबूझ के यशोदा माता एकदम डायरेक्ट पीछे से आ रही थी, क्योंकि यहां तक देख सकते हैं, एकदम यहां नहीं देख सकते। यशोदा माता धीरे 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 आ रही थी, और बंदर मक्खन खा रहे थे। वही बंदर थे जो हनुमान जी की लीला में, रामलीला में बहुत ब्रिज बनाया था, उस समय कोई मक्खन फीस्ट मिला नहीं था, अभी भगवान को इंटरेस्ट के साथ खिला रहे हैं ना, मक्खन खिला रहे। लेकिन फिर कृष्ण को मालूम पड़ गया कि यशोदा माता आ रही है। कैसे मालूम पड़ गया? हाँ, बंदर को खिला रहे, बंदर खा रहे हैं, कोई किसी को प्रेम से आप खिला रहे हो, कुछ खा रहे। अचानक डर गए, बंदर डर गए, और कृष्ण समझ गए कि मैया आई है। और सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा हु इज नॉट कॉट बाय योगीज बिगेन टू रन लाइक अ लिटिल चाइल्ड। कृष्ण दौड़ने लगे और यशोदा माता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके बाल खुल गए, पीछे के सब बाल के ऊपर जो फूल थे वो सब गिर गए। क्यों गिर गए? कि फूल सोच रहे थे कि यशोदा माता इतनी बड़े भक्त हैं, उनके सिर पर रहना अच्छा नहीं, उनके चरणों में रहना अच्छा। और दूसरा फूल ये भी सोच रहे थे, बहुत जल्दी यशोदा माता कृष्ण को उखल से बांधना चाहते हैं, हम इस कॉन्स्पिरेसी में भाग नहीं लेना चाहते, हमारे ऊपर नाम नहीं आए, इसलिए अलग रहना अच्छा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमारे पास समय कम है, लेकिन आपको जब टाइम मिले तो आप पढ़ना डिटेल में जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी बोलते हैं और आचार्य बोलते हैं। और दौड़ते 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 वो कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते। कृष्ण को कौन पकड़ सकता है जो मन की गति से भी फास्ट जाते हैं। मन कितना फास्ट दौड़ता है। आप यहाँ बैठे हो और आप सोच रहे हो यू नो बम्बई राजधानी से भी फास्ट, प्रगति से भी फास्ट, डेक्कन से भी फास्ट मन। यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो अमेरिका, अमेरिका में। लेकिन जो मन की गति से भी जाए पंथास्त्र कोटि शतवत् सरसम प्रगम्यो, वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। कृष्ण दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे, अंत में कृष्ण ने अपनी इच्छा से पकड़े जाना स्वीकार किया। कृष्ण अपनी इच्छा से यशोदा माता द्वारा पकड़े गए और कृष्ण के आंखों में आंसू आ रहे थे। जब बच्चे रोते हैं अपने हाथों को आंखों पर रख के, पूरा काजल सब जगह पर फैल रहा था और डरे हुए थे। रुदंता मुहुर् नेत्र युग्मा मृजांताम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुचुंबितं बिंब रक्ताधरं मे विलसलम लक्ष्य लाभे। रुदंत मुहुर् नेत्र, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो कांप रहे हैं, कृष्ण डर रहे हैं। जिनके नाम से डर भी डर जाता है, एक एक व्यक्ति जिसका नाम है डर, डर प्रभु, वो भी डर जाता है जब आप बोलते हो हरि हरि
हरि हरि
हरि
हरि
हरि
हरि।
इसका नाम लेते हैं डर भी डर जाता है, इसका नाम लेते हैं भूख भी दूर हो जाती है। वो भगवान हरि यशोदा माता के छड़ी से डर रहे हैं। हमको भगवान बोलते हैं मां शुच डू नॉट फियर, दूसरा ना संगता व्यू नकोस, और खुद डर रहे हैं कृष्ण। ये कृष्ण की महानता है, कृष्ण लीला कर रहे हैं। और लीला में अच्छी लीला वो है, एक्टिंग ऐसी है कि ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक्टिंग कर रहे हैं, रियल एक्टिंग है सब। कृष्ण डरते हैं नहीं, बोलते यशोदा माता जल्दी से रस्सी बांध दो, नेक्स्ट सीन है रस्सी बांधने का, फिर उखल को गिराने का, जल्दी करो। तो मुझे नहीं आता कि कृष्ण ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो यशोदा माता ने जब देखा कि बाल गोपाल डर रहे हैं, सोचने लगी अगर मैं कृष्ण को
हरि बोल,
अगर मैं कृष्ण को मारूंगी तो बालक घबरा जाएगा, ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको रस्सी से बांध देती हूँ। यशोदा माता ने लकड़ी को फेंक दिया और अपनी रस्सी प्रेम से लेकर कृष्ण के कमर पे बांधी और देखा उन्होंने दो उंगली कम है। उन्होंने और एक रस्सी दी पड़ोसी घर से, पहले अपने घर से, फिर भी दो उंगली कम। फिर गोकुल के सारे रस्सियाँ एक साथ ले आए, सारे दुकानों में जहाँ जहाँ रस्सी बिक्री होती थी सब लेकर आए, फिर भी दो उंगली का। इसका तात्पर्य बताते हैं आचार्य, ये दो उंगली का अर्थ क्या है। हाँ, एक है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा, हमें कृपा आवश्यक है। हमारा प्रयास है सुबह उठ के मंगल आरती में जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, ये हमारे प्रयास हैं। लेकिन अंत में सफलता जो है वो किस पर आधारित है, कृपा पर। करुणा न होइल कंडिया कंडिया प्राण न रखी बोवार, मुझे कृष्ण की और गुरु की कृपा नहीं मिले तो मेरा जीवन बेकार है। कृष्ण बहुत प्रयास करने के बाद कृष्ण अपनी इच्छा से उस रस्सी के बंधन में आ गए। आज ही वो उखल है, आपने देखा है उस स्थान गोकुल में, वो उखल वो है जिसके साथ भगवान कृष्ण को बांधा गया था। और फिर बंधने के बाद भगवान यशोदा माता चली गई और कृष्ण ने देखा, ओ ये दो पेड़ खड़े हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। ये नल कुबेर और मणिग्रीव पूर्व जन्म में देवता थे, कुबेर के पुत्र। लेकिन एक बार नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और उनके नलकुवेर मणिग्रीव स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ या देवताओं देवियों के साथ, और नारद मुनि को देखकर वो स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए लेकिन नलकुवेर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया, ये यहाँ पर बताई गई है। परम भगवान जिनको यशोदा नंदन कहा जाता है उनको योगी नहीं जान सकते लेकिन भक्त ही जान सकते हैं। कृष्ण भगवान सोचने लगे, मैंने एक मटकी तोड़ी तो मुझे सजा मिली, अब मैं और शरारत करूंगा। ऐसा कहकर भगवान गए और वो दो पेड़ों के बीच में से गए, जिसका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। एक्चुअली नल कुबेर और मणिग्रीव जो हैं वो कुबेर के पुत्र थे, भगवान शिव जी के भक्त थे, भगवान की कृपा से उनके पास कोई सीमा ही नहीं थी ऐश्वर्य की, लेकिन अभिमान के कारण उन्होंने अपराध किया। इसलिए अभिमान भक्ति में बाधक है। जिस व्यक्ति की भावना है त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना, हाँ वो व्यक्ति जो है भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। भगवान कृष्ण वो दो पेड़ों के बीच में चले गए और उखल वहीं फंस गया और कृष्ण ने जोर से खींचा। जैसे उन्होंने खींचा वो दो पेड़ धड़ाम से गिर पड़े और उसमें से दो देवता आ गए, श्री कृष्ण भगवान की जय। उन्होंने बताया कैसे कैसे हमें शाप मिला था और इस तरह से ये सुनने के बाद नल कुबेर और मणिग्रीव अपने धाम में चले गए। देखो ये साधु संघ का प्रभाव है। साधु संघ बड़े आदर से किया जाए या निग्लेक्टफुली भी किया जाए तो भी उसका लाभ होता है। नल कुबेर और मणिग्रीव इन्होंने नारद मुनि का संघ किया, इच्छा से नहीं किया, लेकिन फिर भी नारद मुनि की क्रोध मिलने पे नारद मुनि ने उनको शाप दिया था कि वो वृक्ष बन जाए। और ये वृक्ष कहाँ पर बने? नंद महाराज के घर में। तो साधु से या वैष्णव से संपर्क में आना हमेशा लाभकारी है। अफकोर्स हमें वैष्णव के साथ पॉजिटिवली संग में आना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए या अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से एक साधु के संग में आने से नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। अब मैं कहानी बताऊंगा जो गोपाल चंपू से, शायद आपने नहीं सुनी हो। जब कृष्ण ने दो पेड़ को गिरा दिया तो नंद और सब ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, अरे क्या हो गया क्या हो गया, और सब बोले अरे ये तुम्हारे गोपाल दो पेड़ों के बीच में गए उसने गिरा, ये कभी नहीं हो सकता। यशोदा माता गए कृष्ण के पास, कृष्ण बोले नहीं मैं अभी आपके पास नहीं आऊँगा, आपने मुझे खोली। फिर नंद महाराज गए, नंद महाराज को नंद महाराज ने बोला चलो कन्हैया चलो, बोले नहीं मैं वापस यशोदा के पास नहीं जाऊँगा, चलो गोपाल चलो, नहीं तुमको खिलाएगा कौन, तुम खिलाओगे, तुम्हें रक्षा भी रक्षा तुम्हारा दूध कौन देगा, तुम ही दोगे। अंत में नंद महाराज ने बताया, एक्चुअली उससे पहले एक और चीज़ हुई, जब वो रस्सी से बंधे थे कृष्ण के सखा आए दोस्त, वो सोच रहे थे हम रस्सी खोल दें, लेकिन क्योंकि उनको वात्सल्य रस की रस्सी से बांधा गया था उसको सख्य रस के भक्त नहीं खोल सकते, तो सख्य रस के जो जस्ट लिटिल टाइम है राजेश, आई जस्ट फिनिश वन पास, इस वन पास टाइम आई वाज वेटिंग फॉर दिस, यस या ओके आई जस्ट फिनिश दिस वर्षा असुर लीला है। तो ये जो असुर थे असुर नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, वो बाद में वर्षा असुर बोलने लगा। वॉट वॉज नल कुबेर सॉरी रस्सी का बता रहा था, ये रस्सी जो है ये वात्सल्य रस से बांधी गई थी और इसीलिए सख्य रस के भक्त उसको नहीं खोल सकते। लेकिन अंत में नंद महाराज आए और नंद महाराज उनकी रस्सी खोली और उन्होंने बताया कि यशोदा माता जैसे एक गाय अपने बछड़े से बिछुड़ने के कारण रोती है, यशोदा माता बहुत विलाप कर रहे हैं दुख से। तब कृष्ण दौड़ते हुए गए यशोदा मैया के गोद में चले गए। मैं एक और कथा कहकर हम लोग फिर बाकी का कथा जो है वो दूसरा भवन है अल्प बचत भवन, वहाँ पे हम 1 बजे कंटिन्यू करेंगे। बस मैं 5 मिनट और बोलूँगा। वत्सासुर की लीला। वत्सासुर एक बछड़े के रूप में आया। कृष्ण जब छोटे बालक थे रोज खेलने जाते थे अपने मित्रों के साथ और एक असुर को मारते थे और फिर प्रसाद लेते थे। कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने में लगे होते थे, इतने एब्जॉर्ब्ड होते थे खेलने में, उनको उनको पता ही नहीं चलता था कि ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है। तो योगमाया एक असुर को भेजते थे। कृष्ण घर में होते तभी यशोदा नंद महाराज बोलते कृष्ण मेरे जूते ले आओ, और कृष्ण अपने छोटे से नन्हे से सिर के ऊपर नंद महाराज के जूते ले आते। और कभी कभी कोई भारी चीज़ उठाने को बोलते जो नहीं उठा सकते तो कृष्ण अपने हाथ थपथपाते, हरे कृष्ण आई एम ट्राइंग बट आई कैनॉट डू मैं कर नहीं सकता। एक बार एक फल बेचने वाली आई, ये कहानी आपने सुनी होगी। कृष्ण दौड़ते हुए गए फल लेने के लिए कुछ अनाज के दाने देकर, और फल वाली ने जब कृष्ण की सुंदरता को देखा वो इतने प्रसन्न हुए कि उसने अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए। उसने कैलकुलेट नहीं किया है, देखो 100 ग्राम अनाज दिया तो 2 केला देना चाहिए। कई बार हमारी कैलकुलेटिव मेंटालिटी होती है कि मैंने कृष्ण के लिए इतना किया, कृष्ण ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया, उसकी टोकरी जो है वो हीरे और मणियों से भर गई थी। हम भी अगर कृष्ण को देते हैं वी विल नेवर बी द लूजर, हम खोएंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण को जब हम थोड़ा भी देते हैं तो लाखों गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। लाखों गुना मतलब ये नहीं कि आप 5,000 जन्माष्टमी में दो तो बाद में अक्टूबर में 50,000 मिलेगा, नहीं, मटीरियली नहीं सोचना चाहिए। हम कृष्ण को देते हैं साधारण चीज़ पैसा अनाज कपड़े, और कृष्ण देते हैं हमें भक्ति प्रेम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद सब ब्रजवासी सोचते हैं कि हमें गोकुल नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर रोज असुर आ रहे हैं, ये बहुत डेंजरस जगह है, तो इसलिए वो वहाँ से निकलकर गोकुल से वृंदावन जाते हैं। बोलते हैं वहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी है और वहाँ पर वो निवास करने लगते हैं। एक दिन जब वो खेल रहे होते अपने मित्रों के साथ गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी कभी बैल बन जाते हैं, एक कंबल डाल के चलते, दो मित्र मिलके कंबल डालते, ऐसा लगता है दो, एक आगे एक पीछे, तो 4 पैर वाला बैल चल रहा है, ऐसे वो गेम्स खेलते हैं। कभी कभी वो खेलते लड़ाई करते, कभी कभी एक मित्र जो है फल लेकर ऊपर फेंकता और दूसरे का कर्तव्य होता है कि उड़ते हुए फल को आकाश में दूसरे फल से मारना एम करके। जितने भी गेम्स दुनिया में हैं सब कृष्ण से आ रहे हैं, जन्मादि अस्य यतः इज अ सोर्स ऑफ ऑल अदर गेम्स। एक बार वो खेल रहे थे तो एक बछड़ा आ गया और दिखने में मासूम इनोसेंट चाइल्ड इनोसेंट काफ। कृष्ण ने बलराम जी को बताया ये जो है ना ये असुर है, और धीरे से गए उसको पता नहीं चले, उसकी दो टांगों को पकड़ा और गोल 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 घुमा के एक पेड़ पे फेंक दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। उस असुर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के साथ साथ वो कई फल गिरा दिए उसने। कृष्ण के सखा बोले कृष्ण हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों आपने बछड़े को मारा, ये गोहत्या है। कृष्ण बोले कि नहीं असुर था, कोई असुर हो कुछ हम नहीं खेलेंगे, आपको प्रायश्चित करना होगा। कैसे प्रायश्चित के लिए आपको गंगा में स्नान करना होगा। कृष्ण बोले मुझे हरिद्वार कौन टिकट बुक करेगा जाने के लिए। कृष्ण ने अपने मन से गंगा को वहां बुला दिया, गंगा देवी स्वयं आई और भगवान ने कहा ये जो कुंड है ये जल है, इसमें आप जल के रूप में आ जाओ। वो गंगा को बोलते हैं मानसी गंगा, उसमें वही फल मिलता है जो गंगा में हरिद्वार में स्नान करने में, और क्योंकि ये व्रज में है तो इसका फल लाख गुना ज्यादा होता है मानसी गंगा। ऐसे कृष्ण जब खेल, हाँ एक बार या सॉरी एक बार से गंगा से रिलेटेड नंद महाराज ने कहानी सुनी कि एक बार गरुड़ जी एक सांप को खा रहे थे। गरुड़ जी के लिए सांप खाना नेचुरल है, ब्रेकफास्ट जैसे है ना, और गरुड़ जी सांप को खा रहे ले जा रहे थे तो सांप की पूंछ ने गंगा जी को स्पर्श किया। जैसे गंगा जी को स्पर्श किया उसको चतुर्भुज रूप मिल गया। तो गरुड़ जी खा रहे थे उसको गरुड़ जी ने पीठ में बिठा के गोलोक वैकुंठ ले गए। तो कहानी सुन के नंद महाराज और यशोदा और सब लोग मिलके हरिद्वार जाने लगे स्नान करने के लिए गंगा में, और कृष्ण बोले नहीं नहीं गंगा यहीं पर प्रकट है। सब मित्रों को वहाँ पर लेकर आए जहाँ पर कौन सी नदी थी, मानसी गंगा, और उसमें से भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वयं गंगा देवी पर्सनली आई अपने वाहन पर, क्रोकोडाइल पर सवार होकर, और सबको बहुत खुशी हुई, सबने स्नान किया। और ऐसे ही जब वो एक बार खेल रहे थे, एक और असुर आया, इसका नाम था बकासुर। ये बत्तख के रूप में आया और आते ही उसने कृष्ण को खा लिया, अपने चोंच से कृष्ण को खा के निगल लिया। और सारे असुर बहुत खुश हो गए, कंस के फॉलोअर, हरि बोल या कंस बोल, वेरी हैप्पी। और कृष्ण के मित्र देवता ऊपर से देख रहे हैं, हाय हाय क्या हो गया। उस समय कृष्ण बहुत गर्म हो गए, कृष्ण इतने गर्म हो गए कि उसको ऐसा लगा जैसे मुंह पूरा जल रहा है। तो तुरंत कृष्ण को उगल दिया बाहर, जैसे आप कोई गर्म चीज खा लो, गर्म गर्म समोसा बिना इसके, तो बाहर निकाल दिया। और फिर से आक्रमण करने आया। इस बार कृष्ण ने उसकी एक चोंच को नीचे जमीन पर दबाया और दूसरे चोंच को ऊपर खींच दिया और उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण भगवान की। तो इस तरह कृष्ण ने बकासुर और वर्षासुर का भी अंत किया। और जब वो लौट कर आए तो गोपियां बहुत खुश हुई, कि दिन भर गोपियों को बहुत चिंता होती थी कि कृष्ण 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 को कुछ असुर आक्रमण कर रहे होंगे। लेकिन जब वो लौट कर आते तो बोलते, भगवान हरि ने कृष्ण की रक्षा की, बाय द ग्रेस ऑफ हरि कृष्णा इज प्रोटेक्टेड। और कहने लगे, हमें याद है गर्ग मुनि ने बताया था कि ये बालक की रक्षा, बालक जो हमेशा बहुत सारे असुर आक्रमण करेंगे, लेकिन उसकी रक्षा होगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, नंद महाराज, कावड़ बॉय, दे वुड टॉक अबाउट दिस पास्ट टाइम्स। हमेशा वो लीला की बात करते, एंड दे वुड फॉरगेट द मिजरीज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व को भूल जाते। द सेम रिजल्ट कैन बी एंजॉयड टुडे सिंपली बाय टॉकिंग अबाउट कृष्ण लीला एंड हिज एसोसिएट्स। वही फल आज भी मिल सकता है अगर आप कृष्ण लीला सुनते हो और गाते हो। इस तरह से कृष्ण बलराम उनके मित्र भगवान राम की लीला का नकल करने लगे, जैसे भगवान राम हनुमान जी के, सॉरी भगवान राम नहीं, भगवान राम के वानर हनुमान जी सुग्रीव जैसे लीला करते, वैसे ही ये सब मित्र भी खेलते थे। दे टू इमिटेट पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम। एक्चुअली आप वृंदावन में जाओगे, नंदग्राम के पास एक जगह है, इसका नाम है सेतु बंद। गोपियां बोले, कृष्ण तुम बोलो तुम राम थे पूरे जन्म में, ब्रिज बना के दिखाओ। तो कृष्ण और बलराम मिलकर एक छोटी सी नदी है उसके ऊपर पर्वत फेंकने, पत्थर डालने लगे और ब्रिज बनाया। आज भी वो जगह है, इसको सेतु बंद बोलते हैं। तो इसके बाद अघासुर का वध है, लेकिन अभी अघासुर को आने में थोड़ा टाइम है, वो 1 बजे आएगा।